Good evening, friends. It's a great privilege to be back here in the house of the Lord tonight.
Shab ba khair, dosto. Khudavand ke ghar mein wapis aana aur aaj raat is ibadat mein shareek hona ek badi hi sharaf ki baat hai. Aur subah se ab tak hum is man par basera kar rahe hain aur uski huzuri ke wasile se hamari jaanon ne nihayat hi azim barkat hasil ki. Aur ab aaj raat bhi hamare paas kuch hai aur hum apne mauzu ko shuru kar rahe hain jiska unwan hai saat kalisiyai zamanon aur saat mohron ke darmiyan waqfa. Main aaj subah apne dost se zara guftgu kar raha tha ki agar khudawand ki marzi hui to ho sakta hai ki kuch der mausme garma mein agar khudawand mujhe ghar nahi bulata ya kahin bairune mulk ya kahin aur nahi jata to phir main yahan wapis aakar aakhri saat nursing ko bayan karna pasand karunga, samjhe? Aur ye tamam pul ek saath jude hue hain aur phir iske andar aakhri saat aaftein bhi shamil hain. Aur jaise jaise hum aage badhte hain to hum gaur karenge ki ye sab baatein theek ek saath judi hui hain. Bas aaj raat jab ke hum ek tarah se khamoshi ikhtiyar kiye hue hain to mera khayal hai shayad aaj raat kuch der ho jaye. Yahan tak tak jaise hi main yahan wapis pahuncha, ab dekhen Phoenix mein maine jitni bhi munadi ki to wahan mera gala ek martaba bhi kharab nahi hua, samjhe? Ye sach hai aur ho mere khudaya, maine wahan kitne zor se munadi ki thi aur mera khayal hai ki wahan maine 27 ibadaton ko gale ki kharabi ke baghair saranjam diya tha. Lekin ab gaur kare ki yahan ki aabo hawa mukhtalif hai. Ye sach hai ki yahan ka mausam kharab hai, ye ek wadi hai aur yahan wapis aakar meri sehat kharab ho jati hai. Aur aap jante hain ki mera kya matlab hai, ye buri halat hai. Aur jab koi khadam aur jab wo bolta hai to wo kharab gale ke saath hi shuru kar deta hai. Ek martaba mere ek doctor dost ne mere gale ka muayana kiya taaki dekhe ki kharabi kya hai aur usne bataya koi kharabi nahi. Usne kaha tumhare bolne se tumhari wahan ki jild sakht ho gayi hai. Usne kaha ye munadi ki wajah se hai. Khair, aapko maloom hai mujhe bhi kuch aisa hi lagta hai, lekin jab ye munadi ke kaam ke liye istemal hota hai to mujhe ye behtar mehsoos hota hai, aap samjhe? Isliye ye khuda ki badshah ke liye theek hai. Ab ho sakta hai ki hum is qabil na ho ki yasu masih ke daagon ko apne badan par le sake jaise paulus ne maar khane se liye the, lekin shayad hum munadi karne aur apni awaaz ke wasile buri cheezon ke khilaf bolne se un daagon ko le sake. Bas hum nihayat hi shukrguzar hain khaas taur par is ghadi ke liye ki hame aur maar khane ki zarurat nahi hai. Bas hum kitne log yahan maujood hain jinhone is paigham ko padha hai? Sahibo, ye kaun sa waqt hai? Ye aapko maloom hai kitno ne is paigham ko suna hai? Sahibo, ye kaun sa waqt hai? Ye mujhe thoda sa pareshan kar deta hai. Agar ye aapke paas nahi hai to meri khwahish hai ki kisi bhi tarah ya kisi bhi tarike se aap ise hasil kare aur isko sune. Ye mujhe ek kism se pareshan kar deta hai. Ibadat shuru karne se pehle hi main aapko batana chahta hu taqriban ek hafta ya phir 10 din guzre hain ki main bada pareshan tha aur main ibadat aur koi dusra kaam bhi na kar saka kyunki main iske mutalliq kuch nahi janta tha. ये कुछ इस तरह लग रहा था कि ये कुछ बुरी चीज है और मैं नहीं जानता था कि ये क्या है. बस मैं एक दिन सुबह सवेरे साबिनो वादी में जाने के लिए जाग उठा जो घर से सिर्फ तकरीबन 30 मिनट की मुसाफत है या फिर 40 मिनट की ड्राइव पर है जो सीधी वादी साबिनो की चोटी तक जाती है और फिर वहां से एक सड़क 30 मील तक पहाड़ी के ऊपर जाती है. वहां ऊपर एक अजीब इलाका है. मैं यहां सहारा में हो सकता हूं जहां ठीक अभी 80 या 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन देखें यहां से 30 मिनट चलने के बाद पहाड़ी की चोटी पर 8 फीट बर्फ जमी होती है. हाल ही में हम फिनिक्स में थे जहां कुछ 20 या फिर 28 डिग्री था. उनके स्विमिंग पूल गर्म थे और लोग स्विमिंग कर रहे थे और वहां से तकरीबन 40 मिनट की मुसाफत पर फ्लैग स्टाफ शहर में -40 था, समझे? और यही सारा में और ऊपर के इलाके में फर्क है और ये दमा के मुतासिर लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है और वगैरह वगैरह. लेकिन अब देखें जब मैं वादी में चला गया और जितनी बुलंदी पर मैं जा सकता था मैं वहां चला गया और जब मैं वहां ऊपर बैठा हुआ था तो मैंने खुदावंद से पूछा इस सब का क्या मतलब है और वगैरह वगैरह. और मैं एक किस्म से परेशान था और कुछ नहीं जानता था कि अब क्या करूं. और बस जब के मैं दुआ कर रहा था तो एक अजीब बात वाकया हुई. अब देखें मैं दयानतदार रहना चाहता हूं. अब देखें ऐसे जैसे कि मुझ पर नींद तारी थी या ये एक बेखुदी की हालत थी या फिर ये एक रोया थी. अब मैं तो कमोपेश इसका माइल हूं कि ये रोया ही थी और मेरे हाथ इस तरह फैले हुए थे और कह रहा था ए खुदावंद इस धमाके का क्या मतलब है, اور ان سات فرشتوں سے کیا مراد ہے جو ایک جرمٹ میں مخروط کی صورت میں موجود ہیں، جو مجھے زمین سے اٹھا کر مشرق کی جانب موڑ رہے ہیں؟ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اور میں وہاں دعا میں کھڑا ہوا تھا اور کوئی چیز واقعہ ہوئی، اور اب دیکھیں کوئی چیز میرے ہاتھ پر آ گری۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگر آپ روحانی چیزوں کو نہیں سمجھتے تو یہ آپ کو بڑی عجیب سی معلوم ہوگی، لیکن کوئی چیز میرے ہاتھ میں اٹک گئی، اور جب میں نے دیکھا تو یہ ایک تلوار تھی، اور اس کا دستہ موتیوں سے بنا ہوا تھا، اتنے خوبصورت موتی کہ جتنے میں نے کبھی دیکھے ہوں۔ اور دستہ، آپ جانتے ہیں، جیسا کہ میرا خیال ہے کہ اس کا دستہ آپ کے ہاتھوں میں اس تیز دھار سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، جبکہ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور اس کا دستہ سونے کا تھا، اور اس تلوار کا بلیڈ زیادہ لمبا نہیں تھا، لیکن وہ استرے کی طرح تیز تھا، اور وہ چاندی کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ ایسی خوبصورت تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ میرے ہاتھ میں بالکل فٹ تھی، اور میں نے اس کو تھاما ہوا تھا، اور میں نے کہا، کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ میں نے اس پر نگاہ کی، اور میں نے سوچا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تلوار سے ڈرتا ہوں۔ میں خوش تھا کہ میں ان دنوں میں نہیں رہ رہا جب لوگ اسے استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ میں ایک چھری سے بھی ڈرتا ہوں۔ بس میں نے سوچا، میں اس کا کیا کروں گا؟ اور جب میں اسے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا تو کسی طرف سے ایک آواز مخاطب ہوئی، یہ بادشاہ کی تلوار ہے، اور پھر وہ مجھے چھوڑ گئی۔ خیر، میں حیران ہو رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بادشاہ کی تلوار ہے، اور میں نے سوچا، اگر اس آواز نے یہ کہا ہوتا کہ یہ ایک بادشاہ کی تلوار ہے تو میں اس کے متعلق سمجھ گیا ہوتا، لیکن اس نے کہا بادشاہ کی تلوار۔ بس ہو سکتا ہے کہ میں درست نہ ہوں، لیکن میں نے سوچا، بادشاہ تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ خدا ہے، اور اس کی تلوار ایسی ہے جو ہر ایک دو داری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، سمجھے؟ اور اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میرا کلام تم میں، سمجھے؟ اور میں نے سوچا، آپ دیکھیں، جنگ میں جہاں تک میں، کیونکہ میں اس کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں جانتا، لیکن لڑائی کا ایک اصول ہے، لیکن میری بہترین سمجھ کے مطابق اس میں چھری یا تلوار یا ترچھی چلائی جاتی ہے، اور پھر آخر میں وہ آپ کا دشمن، جس سے آپ نے اپنی اپنی تلواروں کو ایک دوسرے پر چلانا ہوتا ہے، یا روک لیتے ہیں، یا پھر یہ آدمی کی قوت پر منحصر ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں، اس شخص کی تلوار میرے دل کی طرف نشانہ باندھتی ہے، اور میری اس کی طرف، لیکن وہ دونوں رک جاتی ہیں، جس طرح کے ہمارے چاقو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد جب وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو پھر دونوں ایک ہی رفتار میں آ جاتی ہیں، اور پھر دوسرا جو نیچے گرا دیتا ہے، تب تلوار سیدھی دل کی طرف بڑھتی ہے۔ بس اسے لیں، اگرچہ کلام تلوار ہے تو اسے ایمان کے مضبوط ہاتھ میں ہونا چاہیے، تاکہ اسے تھام سکے اور دشمن کے دل میں اتار سکے۔ اب دیکھیں، میں ان باتوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن یہ صرف وہ سب کچھ ہے جو میں نے اس سے حاصل کیا، اور میں یہی بتا سکتا ہوں، اور وہی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بس جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ یہ ایسا ہی تھا۔ کیا ہمارے خداون نے ایسا نہیں کہا تھا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب اس نے باپ سے حاصل کیا تھا، اور وہی بتایا، اور کچھ بھی باقی نہ رکھا؟ اور ہم بھی ان باتوں کو ویسے ہی بیان کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ آتی ہیں۔ اب اگر آپ واقعی ایک حقیقی دانا بنے رہیں اور دعا کرتے رہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ ان باتوں کو بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ اب دیکھیں، کوئی بات ہے جس کے متعلق مجھے امید ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اب اس کتاب کی طرف پڑھتے ہیں، آئیں اب سارے اس کتاب کے پانچویں باب کی طرف مڑتے ہیں، جو کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ اب دیکھیں، کل رات پہلی مور کی باری ہے، جیسا کہ پہلی چار موریں چار گھڑ سواروں کے ساتھ کھلتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک مہر کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اور پھر شاید یہ چار موریں اتنی لمبی نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم تقریباً پیر، منگل، بدھ اور جمعرات سے آگے نہ بڑھیں۔ پھر میرا خیال ہے کہ چھٹی، بلکہ پانچویں، چھٹی اور ساتویں مہر، یہ غالباً بہت لمبی ہوں گی۔ بس ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کو تھوڑا سا وقت دیں، تاکہ آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ مجھے یقین ہے اس ہفتے کی تمام راتوں میں 7 بجے عبادت شروع کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، کیونکہ میں ٹھیک 7:30 بجے پلیٹ فارم پر ہونا چاہتا ہوں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ شاید ہم آدھی رات سے بھی زیادہ وقت لے لیں۔ بس دیکھیں، آج صبح میں بھی میں نے آدھا گھنٹہ زیادہ لے لیا تھا، میرا مقصد ایسا کرنا نہیں تھا، बस मैं नहीं जानता कि उस वक्त क्या होना है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि पहला घुड़सवार कौन है, और ना ही मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं मोहर को जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो इस लम्हे के मुतल्लिक मालूम नहीं है, समझे। मैं सिर्फ उस पर भरोसा कर रहा हूँ, बस इसलिए खुदा के फजल की मदद की बदौलत इस हफ्ते कोशिश कर रहा हूँ, और ये ईमान रख रहा हूँ कि आप इसे गहराई तक समझ जाएंगे। आप जानते हैं कि रोयाओं में आप इन चीजों को जाहिर नहीं कर सकते जब तक के आपको जाहिर करने की इजाज़त ना मिल जाए। कितनी मर्तबा आप लोगों ने मुझे ऐसे कहते हुए सुना है, एक घर में जाओ और वहाँ गालबिन एक टोपी लटक रही होगी और ये एक फला फला बच्चा है, या फिर वगैरह वगैरह, या फिर जब तक वो वहाँ लटक रही है तब तक शिफा नहीं होगी। मैं लोगों को नहीं बता सकता और ना ही मैं उसको उस तरफ मोड़ सकता हूँ। उसको किसी और तरह से उस तरफ मुड़ना है, और कोई भी उसे लेता और उसे मोड़ देता है, और फिर सब कुछ तरतीब में आ जाता है, और फिर वो जाहिर किया जा सकता है। बस अब दुआया हालत में आ जाएं। अब इससे पहले कि हम इस किताब की रसाई हासिल करें, आएं अपने झुके हुए सरों के साथ उससे बातचीत करते हैं। खुदावन यीशु, हम सब के सब अधूरे हैं, और इस मुकद्दस घड़ी में जिसमें रूहें वक्त की मंजिल पर फंसी हुई हैं, बगैर खुदावन से दरख्वास्त किए हम इस मुकद्दस किताब तक रसाई हासिल करने के लिए किसी भी ज़राए को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावन सिर्फ एक ही है जो इस किताब को खोल सकता है। बस अब वो आगे बढ़े और अपने खादम की कमजोर कोशिशों को बरकत दे, और जैसे ही ये बातचीत आगे बढ़ती है तो कलाम को बरकत बख्शना। होने दे कि ये रूल खुद की कुदरत से आगे बढ़े, बस होने दे कि रूहानी जमीन तैयार हो, और जो भूखे और प्यासे हैं वो रास्तबाजी को जाने और खुदा की मर्जी को जाने, और होने दे कि ये कलाम उन जमीनों पर गिरे और वो इसी किस्म का फल लाए। खुदावंद ये बख्श दे, सारी सताइश तेरे लिए है। होने दे कि आज रात तेरे कलाम के वसीले भूखी और प्यासी जाने खुराक और पानी को हासिल करें। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं जिसका ये मुकाशफा है, आमीन। अब देखें, अब हम पांचवें बाब को लेंगे। अब ये सात मोहरें नहीं हैं, बल्कि ये कलीसिय जमानों और सात मोहरों के दरमियान वक्फा है। अब देखें कि छठे बाब में, बल्कि ये मुकाशवा के चौथे बाब में है, और उसमें कलीसिया के ऊपर उठाए जाने के बाद कोई चीज जाहिर होती है, इसलिए कि कलीसिया मुकाशवा के तीसरे बाब में ऊपर उठा ली जाती है और मुकाशवा के 19वें बाब तक वापस नहीं लौटती, समझे। इसलिए कलीसिया मुसीबतों में से नहीं गुजरती। मैं जानता हूँ कि जैसी बात मैंने की है ये हर एक उस्ताद के बरक्स है, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं कि इख्तलाफ रखूं, बल्कि मेरा मतलब आपका भाई होना है, लेकिन मुझे इसे उसी तरह सिखाना चाहिए जिस तरह मैंने इसे देखा है। अब देखें, अगर मैं इस तरह नहीं करता तो फिर मैं इसे एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकता। अब देखें, चाहे ये मुसीबतों से पहले ऊपर जाती है या फिर मुसीबतों के बाद, लेकिन मैं इसके साथ ऊपर जाना चाहता हूँ, बस यही खास बात है। बस हम सिर्फ उन चीजों का ताकुब कर रहे हैं, क्योंकि मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, बल्कि मुमासलत पेश करता हूँ, इसलिए पहले मैं देखता और समझता हूँ कि ये क्या है, या पुराने अहदनामे में ये कैसा है, और फिर नए अहदनामे में ये कौन सी मिसाल या किस चीज का अक्स है, फिर मुझे अंदाजा हो जाता है कि नए में क्या है। देखें, जिस तरह के इससे पहले कि मुसीबत की घड़ी आ मौजूद होती नू कश्ती में दाखिल हो गया, ये एक मिसाल है, गौर करें। लेकिन इससे पहले कि नू कश्ती में गया, देखें, उससे पहले कोई चीज वाकया हुई, यानी हनूक ऊपर चला गया और लूत को सदूम से बाहर बुला लिया गया, इससे पहले कि तबाही करने के लिए मुसीबत का एक भी जरा नाजिल होता, लेकिन इब्राहिम हमेशा ही उससे बाहर रहा। गौर करें, ये मिसालें हैं। लेकिन अब हम पहली आयत को पढ़ेंगे। मैं इसकी पहली दो या तीन आयात की तलावत करूंगा। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे सात मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से मुनादी करते देखा कि कौन उस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। देखें ये कैसी किताब है। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने और पढ़ने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। अब देखें, आप ना काबिलियत की बात करते हैं, लिखा है यहाँ तक कि कहीं भी कोई भी शख्स उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। उसके सात सींग और सात आंखें थी। ये खुदा की सातों रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई है। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। मुकाशवा 5 से पढ़ते हुए नीचे 7वीं आयत तक तलावत करेंगे, मगर यहाँ हम कुछ लम्हात के लिए रुकेंगे। ये सात मोहरों वाली किताब मुकाशवा 10 में सात गर्जों के वक्त जाहिर होती है। अब अगर आप निशान लगा रहे हैं तो इसे लिख लें। आए सिर्फ एक लम्हे के लिए मुकाशवा 10 को खोलते हैं, इससे पहले कि हम इसमें दाखिल हों, आप इस समझ को हासिल कर लें। अब देखें, ये इख्तितामी वक्त है, पर सुने। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी। अगर आप तवज्जो दें तो ये मसीह है, समझे, क्योंकि वो पुराने अहदनामे में अहद का फरिश्ता कहलाता था। अब यहाँ वो बराए रास्त यहूदियों के पास आता है क्योंकि कलीसिया का वक्त खत्म हो चुका था, समझे, ठीक है। और उसका चेहरा आफ्ताब की मानिंद था और उसके पांव आग के सतूनों की मानिंद। आपको याद है कि यही फरिश्ता मुकाशवा 1 में है। एक ही बात है, एक फरिश्ता एक पैगंबर को जाहिर करता है और ये इसराइल के लिए पैगंबर है, समझे। कलीसिया उठाई जा चुकी है, अब देखें, या इसको उठा लिया गया है, अब यहाँ वो अपनी उस कलीसिया के लिए आता है। अब तवज्जो करें, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। अब देखें, वहाँ वो बंद थी और सरबा मोहर थी, और यहाँ ये खुली हुई है, ये खुली हुई है। उस वक्त ये मोहर बंद थी, लेकिन हम आज रात इसमें दाखिल हो रहे हैं। अब किताब खुली हुई है और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। ओ सूरज कैसा होता है, सतून, सिर्फ एक मिनट इंतजार करें, मुझे यहाँ से दोबारा शुरू करने दें और पढ़ने दें। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दहना पांव तो समुन्दर पर रखा और बायां खुश्की पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर दाड़ता है। हम जानते हैं कि वो यहूदा के कबीले का बब्बर है, लेकिन वहाँ पर वो बर्रा है, लेकिन यहाँ पर वो बब्बर है, समझे। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की सात आवाजें सुनाई दी। अब जो कुछ यूहन्ना ने देखा उसे उसको लिखने का हुक्म मिला, पस रसूल यानी नबी ने उसको लिखने के लिए अपना कलम उठाया। और जब गर्ज की सात आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन सात आवाजों से सुनी है उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। अब ये वो है जिसे हम नहीं जानते, ये अभी जाहिर होनी है, ये अब मुकद्दस कलाम में तहरीर नहीं है कि इन गर्जों में क्या कहा गया है। और जिस फरिश्ते को मैंने समुन्दर पर और खुश्की पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया। अब सुने, और जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें पैदा की हैं, और उसकी कसम खाकर कहा अब और देर न होगी। ध्यान दें, यहाँ एक ऐत है जिसे मैं लेना चाहता हूँ, बल्कि सातवें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। अब गौर करें, इस सात मोहरों वाली किताब का भेद सातवें कलीसिया के फरिश्ते के पैगाम देने के जमाने में जाहिर होगा। समझे, जब सातवां फरिश्ता नरसिंगा फूंकना शुरू करता है और फिर वहां से ये पैगाम लिखा जाता है और हम इसे टेप और किताब की सूरत में पाते हैं। अब देखें, जब पैगाम का नरसिंगा फूंकना शुरू होता है तो तब उस वक्त खुदा का पोशीदा मतलब पूरा होगा। देखें, अब हम गौर करेंगे कि खुदा के पोशीदा भेद की किताब उस वक्त तक जाहिर नहीं होती जब तक सातवें फरिश्ते का पैगाम फूंका नहीं जाता। अब देखें, ये बातें मोहरों के दौरान बड़ी ही आम होंगी और मैं पुर यकीन हूँ, क्योंकि जरूर ही इसके हर एक नुक्ते को आपस में मिला हुआ होना चाहिए। अब इसमें लिखे गए भेदों के मुतालिक कहीं कोई भी शख्स नहीं जानता, सिर्फ खुदा यानी यीशु मसीह जानता है, समझे। लेकिन अब देखें, ये एक किताब है और ये भेदों की किताब है, ये मखलसी की किताब है। हम थोड़ी ही देर में इसमें दाखिल हो जाएंगे और हम जानते हैं कि ये मखलसी की किताब मुकम्मल तौर पर समझी नहीं गई थी, क्योंकि छठे कलीसिया जमाने तक इसकी छानबीन होती रही। लेकिन आखिर में जब सातवां फरिश्ता अपने भेद का नरसिंगा फूंकना शुरू करता है, तो वो सब खोई हुई बातों को जिनकी वो अशकाश छानबीन करते रहे हैं एक साथ इकट्ठा कर देता है, और फिर खुदा के भेद खुदा के कलाम की तरफ से आते हैं, और फिर खुदा के सारे मुकाशफात जाहिर हो जाते हैं, फिर खुदा की अलूहियत और बाकी हर एक भेद खुल जाता है। तमाम वेद, सांप की नस्ल और इससे भी बढ़कर जो कुछ भी है, वो सब कुछ जाहिर हो जाता है। अब आप देखें, मैं इस बात को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये वो है, खुदावंद यूं फरमाता है। देखें, मैं इसको आपके लिए किताब से पढ़कर सुनाऊंगा, बल्कि सातवें फरिश्ते के पैगाम देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने मुकद्दस नबियों को दी थी पूरा होगा। नबी वो हैं जिन्होंने कलाम लिखा, और सातवें कलीसियाई जमाने में यानी आखिरी कलीसियाई जमाने में नरसिंगा फूंकते वक्त वो सब उन खोई हुई बातों को जो उन गुजरे जमानों में खो गई थी एक साथ इकट्ठा करेगा। और जब मोहरें टूटती हैं, तो भेद जाहिर हो जाते हैं, और फिर फरिश्ता पयंबर यानी मसीह नीचे आता है, जो अपने एक पांव को खुशकी पर और दूसरे को समुन्दर पर रखता है, और उसके सर पर धनक है। लेकिन अब याद रखें, जब ये आमद हो रही है, तो इस वक्त ये सातवां फरिश्ता जमीन पर है। बिल्कुल जिस तरह यूहन्ना अपना पैगाम दे रहा था, तो वो बिल्कुल वही वक्त था जिन दिनों में मसीह आया था, और यूहन्ना जानता था कि उसे देखेगा, क्योंकि उसी ने उसको मुतारिफ करवाना था। और हम जानते हैं कि कलामे मुकद्दस में मलाकी 4 में ये बात मौजूद है, जहाँ कोई ऐसा आदमी है जिसे यूहन्ना की मानिद होना है, एक एलिया होना है जिसके पास खुदा का कलाम आता है, और उसने खुदा के तमाम वेदों को रूह कुदस के वसीले जाहिर करना है, और औलाद के ईमान को वापस रसूली वालदों के ईमान की तरफ बहाल करना है, और इन तमाम वेदों को बहाल करना है जिनकी इन तंजीमी सालों में तहकीक होती रही है। अब ये वो बात है जो कलाम ने कही है, और मैं सिर्फ उसी बात के लिए जिम्मेदार हूँ जो कलाम ने कही है, समझे, क्योंकि ये लिखा है और यही दुरुस्त है और यही सब कुछ है। अब हम इस सात मोहरों वाली किताब को देखते हैं। अब देखें, ये मखलसी के भेद की किताब है, ये खुदा की तरफ से मखलसी की एक किताब है। अब तमाम वेद इस जमाने में इस पैगंबर के आवाज देने के जमाने में पूरे हो जाएंगे। अब देखें, ये एक फरिश्ता जमीन पर है और दूसरा जोरावर पयंबर आसमान से नीचे उतरता है। देखें, ये एक जमीनी फरिश्ता है, एक पयंबर है, लेकिन वो जो आसमान से नीचे उतरता है और धनक के अहद के साथ मौजूद है, अब देखें, वो सिर्फ मसीह ही हो सकता है। बिल्कुल जिस तरह वो मुकाशवा पहले बाप में था, जहां वो सोने के सात चिरागदानों के बीच में धनक के साथ खड़ा हुआ है और वो संगे यशब और हकीक सा मालूम होता है, और यहां वो वापस दसवें बाब में आता है और उसके आने का ये वक्त मोहरों के टूटने और तमाम वेदों के पूरे हो जाने के बाद का वक्त है, और जहां वो ऐलान करता है कि अब और देर न होगी। और उसने कहा, जब सातवां फरिश्ता नरसिंगा फूंकना शुरू करता है तो फिर खुदा का पोशीदा मतलब पूरा हो जाता है और फिर उस फरिश्ते के लिए जाहिर होने का वक्त आ जाता है। हम किसी भी तरह करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, अब गौर करें, सात मोहरों ने किताब के भेद को थाम रखा है, और जब तक हम देख नहीं सकते कि इन सात मोहरों के अंदर क्या सरबा मोहर है, तब तक हम इन चीजों का सिर्फ ख्याल ही कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आज सुबह मैंने आपको बताया था, आज सुबह के अपने छोटे से पैगाम में बताया था कि खुदा सादगी में छुपा हुआ है। आप देखें कि हम यकीनन इस बात को खो सकते हैं जब तक वाकई हकीकत में ये रूल कुदूस के वसीले जाहिर नहीं हो जाती और फिर इसी तरह इसकी तस्दीक नहीं हो जाती। समझे, अगर कोई नबी उठ खड़ा होता है और आपको बताता है कि ये इस तरह है और खुदा उसकी तस्दीक नहीं करता, तो फिर उस बात को भूल जाए। समझे, क्योंकि खुदा हर बयान में और हर बात में उसकी तस्दीक करता है और उसे दुरुस्त बनाता है। समझे, लिहाजा उसके बच्चे इन बातों पर ध्यान करेंगे, देखें और होशियार हो जाएंगे। गौर करें, उस किताब पर सात मोहरें हैं, और देखें कि उन सात मोहरों ने उस किताब को सरबा मोहर रखा है। समझे, किताब यकीनी तौर पर सरबा मोहर है। क्या आप इस बात को समझे? किताब मुकम्मल तौर पर मोहर बंद है जब तक के सात मोहरों को तोड़ा नहीं जाता, इसलिए कि इसे सात मोहरें लगाकर बंद किया गया है। अब देखें, ये सात गर्जों से मुख्तलिफ हैं। समझे, इस किताब पर सात मोहरें लगाई गई हैं और ये किताब तब तक, बल्कि ये मोहरें तब तक नहीं खुलती जब तक के सातवें फरिश्ते का पैगाम नहीं दिया जाता। समझे, इसलिए हम सिर्फ ख्याल कर रहे हैं, लेकिन खुदा का हकीकी मुकाशफा उसी आवाज के दौरान कामिल बनाया जाएगा और सच्चाई की तस्दीक होगी। अब देखें, क्योंकि ठीक यही बात है जो कलाम कहता है कि उस वक्त खुदा का पोशीदा मतलब पूरा होगा। और याद रखें कि ये सात मोहरों वाली किताब मुकाशवा के पांचवें बाप में बंद थी और फिर मुकाशवा के दसवें बाप में इसे खोला गया है, और अब हम देखने लगे हैं कि किताबे मुकद्दस इसके मुतल्लिक क्या कहती है कि ये कैसे खुलती है, और इसे उस वक्त तक जाना नहीं गया जब तक के बर्रा इस किताब को नहीं लेता और मोरों को नहीं तोड़ता और किताब को नहीं खोलता। समझे, बर्रा इस किताब को लेता है और ये पोशीदा थी। अब याद रखें, आसमान पर कोई नहीं है और ना ही जमीन पर कोई शख्स है, अब चाहे पोप, बिशप, कार्डिनल, स्टेट प्रेसबिटर या वो कोई भी हो, सिवाय बरे के कोई इन मोहरों को नहीं तोड़ सकता और इस किताब को या नहीं कर सकता। और हमने सिर्फ तहकीक की और ख्याल किया और उलझ गए और हैरान हुए, और यही वजह है कि हम सब एक गड़बड़ में उलझ गए। लेकिन माउदा वादे के साथ ये मखलसी की किताब इन आखिरी दिनों में, जिनमें अब हम रह रहे हैं, बरे के वसीले मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी और ये मोहरें भी बरे के वसीले खुल जाएंगी, और इसको तब तक जाना नहीं जाता जब तक के बरा किताब को नहीं लेता और मोहरों को नहीं तोड़ता। क्योंकि याद रखें कि ये किताब उसके हाथ में है जो तख्त पर बैठा हुआ है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था, बरा उसके पास आया और उसके दाहिने हाथ से किताब को ले लिया। किताब को ले लेता है। हो, ये जरा गहरी बात है, लेकिन अगर हम इसे समझ सकें, तो सिर्फ हम रूल कुदुस की मदद से ही इसे समझ सकते हैं। अब हम उसी पर भरोसा कर रहे हैं और हम इस पर बाद में गौर करेंगे, क्योंकि ये आखिरी वक्त में है, जब वक्त खत्म हो जाता है। अब तंजीमों के पास भी इस किताब की तफसीर करने का कोई हक नहीं, और ना ही किसी शख्स के पास इसकी तफसीर करने का कोई हक है। सिर्फ बरा ही है जो इसकी तफसीर कर सकता है, और बरा ही वो है जो इसको बयान कर सकता है, और बरा ही ऐसा कलाम करता है जो जिंदगी के कलाम को लाने और उसकी तस्दीक के वसीले जाना जाता है। समझे? यकीनन। तवज्जो दें, और उस वक्त तक अयान नहीं होती, ये किताब उस वक्त तक अयान नहीं होती जब तक के कलीसिय जमाने और तंजीमी जमाने गुजर नहीं जाते। लिखा है, फिर और देर ना होगी। इसको समझे, ये सिर्फ कलीसिय जमानों और तंजीमी जमानों के गुजर जाने के बाद ही अयां होती है। यही वजह है कि आज रात भी उलझन मौजूद है। देखें, लोग कोई भी छोटी सी तालीम को लेते हैं और फिर वो एक तरफ खिसक जाते हैं और कहते हैं ये इस तरह है, और फिर कोई और दूसरी तालीम को लेता है और एक तरफ हो जाता है और कहता है ये तो इस तरह है। इस तरह हर एक इस बात की वजह से एक तंजीम बना लेता है, यहाँ तक कि हमारे पास सैकड़ों की तादाद में तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन अब भी इन सब में अगर आप देखें तो उलझन मौजूद है, और लोग अब भी हैरान हो रहे हैं कि सच्चाई क्या है। क्या आज बिल्कुल यही हालत नहीं है? लेकिन उसने वादा किया है कि जब ये वक्त पूरा हो जाएगा और जब सातवां फरिश्ता आवाज देगा, देखें, उस वक्त ये किताब अयां हो जाएगी। अब ऐसा मत कहें, कोई नहीं, जो लोग पीछे थे वो नहीं बचे, लेकिन ये तो भेद थे जिन्हें वो लोग समझ नहीं सके थे। अब देखें, कैसे तीन खुदा हो सकते हैं और फिर एक भी है? कैसे कलामे मुकद्दस कह सकता है बपतिस्मा बाप बेटे और रूह कुदुस के नाम में दो, और फिर दूसरी तरफ कहता है कि बपतिस्मा यस्सु के नाम में दो? समझे? हो, ऐसी और बहुत सी बातें हैं। अब देखें, कैसे हवा सेब खा सकती थी और उसकी बिना पर सारी दुनिया बर्बाद की जा सकती है। समझे? ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं? लेकिन इन तमाम भेदों को खोलने का वादा आखिरी दिनों में किया गया है। ये छोटी छोटी बातें आखिर में खुलती हैं। देखें, ये अजीम जंग जो मंजर पर आए, जैसे कि अरिनियस और मार्टन, बल्कि सेंट मार्टन और पॉलीकार्प और मुख्तलिफ लोग जैसे कि लूथर और वेस्ली वगैरह, समझे? देखें कैसे ये लोग आए और लंबे अरसे तक रहे ताकि एक किस्म की रोशनी और उसकी चमक को लाएं, लेकिन ये लोग बहुत सारी बातों को तारीकी ही में छोड़ गए, और साथ ही लूथरन जमाने की तरह पेंटिकोस्ट लाए और शाख से इधर उधर दौड़ते रहे, लेकिन तो भी ठीक है, इसलिए कि हम नहीं कहते कि वो दुरुस्त नहीं है, वो ठीक थे, लेकिन कुछ बातें पीछे छोड़ दी गई जिनकी वजाहत नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है? देखें, मोहरें नहीं खोली गई जिनके जरिए मुकम्मल तौर पर जाहिर होकर ये बातें सामने आनी थी, समझे? लेकिन फिर आखिरी जमाने में इन तमाम वेदों को खोला जाना और बाहर लाया जाना है, और मोहरों को बरे के वसीले खोला जाना है, और कलीसिया पर जाहिर किया जाना है, और फिर मजीद वक्त नहीं होगा। समझे? कैसी आला बात है। और फिर इसके बाद किताब ये मखलसी की एक किताब है, क्योंकि फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, और हम बाद में इस बात को देखेंगे कि कैसे 144,000 को इसमें बुलाया जाता है और वगैरह वगैरह। ठीक है, ये यहूदी हैं। अब पालूस को देखें, आए थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन हवालों में से कुछ मेरे पास हैं और मेरा ख्याल है कि हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। अब आए हम सब इस तरफ बढ़ते हैं कि पालूस इफिसियों 1 में क्या कहता है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लिख रहे हैं और उन्होंने अपनी कापियों को पकड़ रखा है और हवाला जात लिख रहे हैं और उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए अपनी अपनी बाइबल में निशान लगा रहे हैं। बस ये बड़ी अच्छी बात है, मैं पसंद करता हूँ कि आप ऐसा करें, और फिर जब घर जाएं तो इसका मुतालिया करें, समझे? और अगर आप जाती तौर पर इसका मुतालिया करते हैं तो फिर आप इसके मुतल्लक बेहतर तौर पर समझ जाएंगे, समझे? सिर्फ इसका मुतालिया करें और खुदा से इल्तिजा करें कि वो इसको समझने में आपकी मदद करे। अब आएं इस एक हवाले को पढ़ते हैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफिसियों 1:13-14। अब देखें, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक माउदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेराज का बयाना है, ताकि उसके जलाल की स्ताइश हो। समझे? अब देखें, जबकि हमने इस हवाले को खोला है, तो आए हम इस पर गौर करें कि यहाँ पर खुद रूह कुदस एक मोहर है। रूह कुदस एक मोहर है, और एक मोहर निशानदही करती है किस चीज की, कि कोई काम खत्म हो चुका है। और पाक रूह एक मोहर होने की हैसियत से किसी भी फर्द के लिए है, और फिर उस फर्द के लिए जब वो पाक रूह को हासिल कर लेता है, तो फिर उसके कराने का वक्त खत्म हो जाता है। देखें, क्योंकि ये एक मुकम्मल शुदा काम है। अब देखें, जिस तरह मैं रेलवे रोड कंपनी के लिए इस बात को इस्तेमाल करता हूँ, जैसे हम बाल्टी की फैक्ट्री से बाल्टियों के बॉक्स और दूसरी मुख्तलिफ चीजों से गाड़ियों को लोड करते थे, और फिर इसके बाद, इससे पहले कि उस गाड़ी को मोहर लगाई जाए, इंस्पेक्टर उसके पास आता था, ताकि देखे कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर लोड है, और अगर नहीं तो पहले उसे किसी चीज के साथ दबाया जाता है, वरना सामान बिखर कर टूट जाएगा, और इसकी रेलवे कंपनी जिम्मेदार होगी। इसलिए वो इंस्पेक्टर हर चीज को परखता है, ताकि देखे कि हर चीज मुकम्मल तौर पर अपनी अपनी जगह पर है, और अगर हर चीज अपनी जगह पर नहीं होती, तो फिर वो उस गाड़ी को रद्द कर देता है, और फिर हमें सब कुछ दोबारा करना पड़ता है। और जब इंस्पेक्टर मुतमिन हो जाता है, तो फिर वो दरवाजे बंद कर देता है। इंस्पेक्टर दरवाजा बंद करता है, और इंस्पेक्टर उसके ऊपर एक मोहर लगा देता है, और फिर कोई भी उस मोहर को तोड़ नहीं सकता, जब तक वो चीज अपने मकाम तक नहीं पहुंच जाती। और यही वो काम है जो पाक रूह कर रहा है। समझे? वो जाता है और मुआयना करता है। यही सबब है कि आपके पास ये चीजें नहीं है। आप कहते हैं, मैंने गैर जुबानें बोली, और मैंने नारे लगाए, और मैं रूम में नाचा, मगर इस बात का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। समझे? और पाक रूह उस शख्स का उस वक्त तक मुआयना करता है, जब तक वो मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं हो जाता, और समझ नहीं लेता कि ये वही है। इसके बाद उन पर अबदी मंजिल के लिए मोहर कर दी जाती है, फिर कोई भी उस मोहर को कभी तोड़ नहीं सकता। और बाइबल, आप हवालों को लिख रहे हैं, देखें, इफिसियों 4:30 में लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। अब इस बात को थाम ले, मखलसी के लिए, समझे, उस दिन तक के लिए, जब तक के मखलसी की किताब को अयान नहीं किया जाता, और मखलसी देने वाला आकर अपनी मलकियत का दावा नहीं करता, बस कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता है। समझे? इसलिए उसे रंजीदा ना करो, कायम रहो, और ऐसे काम करो जिससे खुदा खुश हो, क्योंकि किताब मोहर शुदा है। अब देखें, आप भी मोहर शुदा हैं, और रूह कुदस खुद मोहर है। मोहर निशानदही करती है। अब देखें, ये वो अल्फाज हैं जो मैंने डिक्शनरी से हासिल किए हैं। मोहर निशानदही करती है कि ये काम खत्म हो चुका है। और जब सातवीं मोहर तोड़ी जाती है, तो खुदा का पोशीदा मतलब, जो इन भेदों से भरी हुई मोहरों के अंदर मोहर बंद है, पूरा हो जाता है। यानी उस दिन तक, जब तक ये मोहर तोड़ी नहीं जाती, और इसके बाद ये जाहिर हो जाता है कि इसके अंदर क्या है। और अगर कोई आदमी हैरान हो रहा हो कि उस माल गाड़ी में क्या है, और कहता है कि उसमें फला फला चीज है, उसमें ये या वो है, तो वो सिर्फ अंदाजा ही लगा रहा है। लेकिन जब मोहर तोड़ी जाती है और दरवाजा खोला जाता है, तो फिर हम उसमें देख सकते हैं और गौर कर सकते हैं कि दर हकीकत उसमें क्या है। क्या आप इसे समझे? और ये सिर्फ आखिरी वक्त में ही पूरा होगा। और दूसरी बात, एक मोहर मलकियत को जाहिर करती है। गौर करें कि मोहर उस चीज के ऊपर एक छाप लगाती है जो मलकियत को जाहिर करती है। जब आप यीशु मसीह के खून के वसीले खरीदे जाते हैं, और पाक रूह के वसीले मोहर बंद हो जाते हैं, तो फिर आपका दुनिया या दुनिया की किसी चीज के साथ कोई सरोकार नहीं रहता, और आप खुदा की मलकियत बन जाते हैं। और फिर एक और बात कि एक मोहर एक जमानत होती है। मोहर का मतलब है कि आप महफूज हैं। अब देखें कि आप अबदी तहफ्फुज़ पर ईमान रखते हैं, मैं नहीं जानता, समझे, लेकिन अब देखें कि एक मोहर किसी चीज को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की निशानदेही करती है। अफसोस उस शख्स पर जो उस मोहर को तोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि पाखरू की मोहर को तोड़ा नहीं जा सकता। आप तमाम लोगों ने मुझे ये कहते सुना है कि लोग कहते हैं शैतान मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। नहीं नहीं, शैतान ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि आप मोहर शुदा ही नहीं थे, क्योंकि जब आप पर मोहर लगा दी जाती है तो वो मोहर से बाहर हो जाता है। जी हाँ, समझे। अब देखें, फिर आप उसकी पहुंच से बाहर निकल जाते हैं। जी हाँ, फिर आप ही उसके पास जाते हैं, मगर वो आपके अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके अंदर सिर्फ एक ही तरीके से दाखिल हो सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो आपने अपनाया था। उसे निजात पानी होगी, तकदीस हासिल करनी होगी और रुल्कदुस से भरना होगा, इसके बाद ही वो आपका भाई बन सकेगा। बस आप गौर करें कि वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, हरगिज नहीं। देखें, आप सरहद के करीब जाकर फिर दुनिया की चीजों की ख्वाहिशों के लिए वापस नहीं लौट सकते, इसलिए आप गौर करें। आपने कभी भी यर्दन को पूरे तौर से कनान में जाने के लिए पार नहीं किया है, यानी अपने आप को मारा ही नहीं है, समझे। अब तवज्जो दें, अब ये किताब मोहर बंद है और आप इस किताब के साथ मखलसी के दिन तक मोहर बंद है। एक बार फिर रोमियो 8:22-23 में देखते हैं। आए, इसे लेते हैं और हम इसे पस से मंजर के लिए पेश करेंगे, और अगर हर शख्स इसे अपने लिए पढ़ता है तो मेरा ख्याल है कि फिर हम इसे थोड़ा बेहतर तौर पर समझ जाएंगे। मैं आपको यहाँ कुछ हवाला जा दे रहा हूँ, बस हम इन पर गौर कर सकते हैं जबकि वक्त काफी है। अब देखें, 8:22 को शुरू करते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराती है और दर्द ज़े में पड़ी तड़पती है। और ना फक्त वही, बल्कि हम भी जिन्हें रू के पहले फल मिले, आप अपने बातन में कराते हैं और ले पालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। हो मेरे खुदाया, हो मेरे खुदाया, क्या हमें ये पुराने गल्ले की तरह अच्छा महसूस नहीं होता। देखें, उस घड़ी के लिए राह देख रहे हैं, इससे हम सबको अच्छा महसूस होना चाहिए। हम समझते हैं कि ये पहली क़यामत में वकूफ़ पज़ीर होगा। देखें, मखलूकात करा रही है, हम भी करा रहे हैं, बल्कि हर एक चीज करा रही है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कुछ गड़बड़ है, और आप सिर्फ एक ही तरीके से करा सकते हैं और उस घड़ी के लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से नई जिंदगी आनी है जो एक नई दुनिया की बात करती है। जैसा कि मेरी बीवी यहाँ मौजूद है, और कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि हम एक सुपरमार्केट में गए थे और मैंने कहा, देखो हमने एक अजीब चीज देखी, और वहाँ एक औरत एक अजीब लिबास पहने हुए थी और वो बड़ी ही अजीब लग रही थी, समझे, और वो सब तकरीबन बरहना थी, आप समझे, और किसी भी तरह उन्होंने गफलत बरती और वो लिबास के बगैर ही बाहर चली आई। लिहाजा इसके बाद हम देखें वो दानिस्ता तौर पर गफलत बरतती हैं। और इसके बाद मीडा ने मुझसे कहा, उसने कहा, बिल ऐसा क्यों है, उसने कहा, ओ, बल्कि मैंने कहा ये इस कौम की रूह है, और मैंने कहा जब तुम जर्मनी में थी तो उनके पास एक मुख्तलिफ रूह थी, अगर फिनलैंड में जाओ तो उनके पास उनकी कौमी रूह है, और अगर आप अमेरिका में जाएं तो हमारे पास अपनी कौमी रूह है। हमारी कौमी रूह शरारती और ठट्ठेबाज है, आप जानते हैं ऐसा क्यों है, हालांकि हमारी बुनियाद रसूलों की तालीम पर थी, हालांकि हमारी लीडरशिप की बुनियाद अजीम आदमियों पर थी जैसे वाशिंगटन और लिंकन, लेकिन हम उस बुनियाद से हट चुके हैं, और हम जानते हैं कि अब ये बात हम में आ चुकी है, और हम जानते हैं कि एक एटम बम हासिल कर चुके हैं और हमारे नाम उस पर लिखे जा चुके हैं। हम जानते हैं कि गुलामी की वो घड़ी हमारे आगे पड़ी हुई है। अपने आप को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये मुझे उन मजाया फनकारों की याद दिलाता है जो गिरते जा रहे थे और जाते हुए ऐसे ऐसे मजाक कर रहे थे और जारी रखे हुए थे। औरतें और मर्द भी एक साथ मिलकर यही चाहते हैं और इसी को जारी रखते हैं। इससे मुझे एक छोटे लड़के की बात याद आती है जो कब्रिस्तान से गुजर रहा था और सिटी बजा रहा था और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो डरता नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर वो डरता है, समझे, वो किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। वो सिर्फ इसलिए सिटी बजा रहा था, समझे, वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो डरा हुआ नहीं है, लेकिन वो डरा हुआ था और आज भी बिल्कुल यही मामला है। लेकिन हो, ईमानदार के लिए कैसी बाबरकत उम्मीद है जो हाथों को ऊपर उठाए हुए है, क्योंकि हमारी मखलसी करीब है। इसलिए कि जब वो इन चीजों को जाहिर होते हुए देखता है तो ईमानदार के लिए ये एक अजीम घड़ी है। अब देखें, जैसा कि ये चीजें हमारे बदनों में करा रही हैं, क्या आपने कभी एक दरख्त पर तवज्जो दी है कि वो जिंदगी के लिए किस कदर जद्दोजहद करता है? वो जिंदा रहना चाहता है। और आपने एक जानवर पर तवज्जो दी है, मरते मरते हुए भी वो किस कदर जद्दोजहद करता है? और आपने एक इंसान पर गौर किया है, हर एक चीज बल्कि फितरत भी करा रही है, हम अपने आप में करा रहे हैं, समझे। हम जानते हैं कि कोई गड़बड़ है और हम इन आयात से देख सकते हैं कि इंसान और जमीन दोनों का कुछ खो चुका है, बल्कि सारी मखलूकात ही कुछ खो चुकी है, क्योंकि हम इस इल्हामी कलाम से देख सकते हैं कि किसी मकसद के लिए सारी मखलूकात करा रही है। आप उस वक्त तक नहीं कराते जब तक उसके लिए कोई मकसद ना हो, जैसा कि मैंने स्याही के कतरे के मुतल्लिक कहा था कि उसका कोई मकसद होता है। और इसी तरीके से बीमारों के लिए दुआ की जाती है उस वक्त तक जब तक आप उस वजह को तलाश नहीं कर पाते। मुझे इलाज मालूम है, लेकिन मैं उस वजह को तलाश करता हूँ। यही वजह है कि रोयाओं की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि ये नमाया करती हैं, ये दिलों के भेदों को जाहिर करती हैं और उस शख्स को बताती हैं कि कहाँ उसने गलती की है और क्या करना चाहिए, समझे। कोई मसला नहीं, चाहे आपने कितनी दवाइयाँ ले रखी हैं, या चाहे कितना ही आपने अपने सरों में तेल अंडेल रखा है, या चाहे कोई कितनी ही जोर से आपके ऊपर चला रहा है, अगर उसके साथ कोई गलत है तो वो वहाँ ही खड़ा रहेगा। मैं कहता हूँ वो शैतान है। अब देखें, आज हम दवाई लेने में आगे हैं और हम फिर भी इन चीजों के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। आप कहते हैं उसको कैंसर है, ठीक है, मगर ये कुछ नहीं है, बस ये तो सिर्फ इसका नाम है। ये नाम तो सिर्फ मेडिकल ने दिया है, कैंसर, लेकिन इसका उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ वो नाम है जो हम कहते हैं और हम सिर्फ इसे कैंसर के नाम से पुकारते हैं, लेकिन हकीकत में ये क्या है, इसे परख कर देखें, ये शैतान है। अब देखें, हम कहते हैं गुनाह, हम इसे सिर्फ गुनाह कहकर पुकारते हैं, इसे तोड़ कर देखें, गुनाह क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं शराब पीना, जनाकारी करना, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ गुनाह की खसूसियात है, समझे। देखें, ये तो गुनाह का सबब बनते हैं, लेकिन असल गुनाह बेएतकादी है। देखें, यही इसका नाम है और इसे यूं ही पुकारा जाता है। अगर आप एक ईमानदार हैं तो फिर आप ऐसे काम नहीं करते। कोई मसला नहीं, चाहे आप अपने आप को बड़ा पाक बनाने की कोशिश करते हैं और आप कितना मजहबी होने की कोशिश करते हैं, अगर आप वैसे काम करते हैं तो आप बेईमान हैं। यही कलाम कहता है। अब देखें, कुछ खो गया है और वो करा रहा है, वो वापस आने की कोशिश कर रहा है ताकि अपनी असली हालत में वापस तब्दील हो जाए। कि आप तसव्वुर करेंगे कि कोई जमीन से एक गहरे गड्ढे में किसी तरफ गिर जाता है और फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहता है और फिर उन्हें किसी भी तरीके से उस गड्ढे से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो उसकी अपनी असल जगह नहीं है, और वो पागलों की तरह चीख रहे होते हैं और वो दीवारों को नोच रहे होते हैं और शोर मचा रहे होते हैं या किसी भी तरह से कुछ कर रहे होते हैं, वो करा रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी असल जगह पर वापस आ जाएं। इसलिए एक शख्स दुख, दर्द और बीमारी के साथ मारा जाता है। एक वक्त था जब वो इस तरह नहीं थे, लेकिन अब वो करा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ गड़बड़ है और वो करा रहे हैं और वापस उस जगह पर आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ वो सेहतमंद थे। और जैसा कि बाइबल कहती है कि फितरत और लोग करा रहे हैं, और ये जाहिर करता है कि कुछ है, क्योंकि उन्हें जिस हालत में होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि वो कहीं से गिर चुके हैं। अब देखें, हमें इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि कोई इसकी हमारे लिए तफसीर करे, समझे।
course we know it was eternal life.
बेशक, क्योंकि हम जानते हैं ये अब्दि जिंदगी थी जहाँ से वो गिरे थे, और आदम और हवा के गिरने की वजह से उन्होंने अब्दि जिंदगी से अपना दावा खो दिया, और वो बागे अदन में अब्दि जिंदगी की तरफ से मौत की तरफ गिर गए, और उनकी बदौलत सारी मखलूकात मौत में चली गई। देखें, एक दरख्त आदम से पहले कभी नहीं मरा था, और ना ही आदम से पहले कभी कोई जानवर मरा था। अब सिर्फ एक ही चीज है जो कभी फना नहीं हो सकती, और वो खुदा है, क्योंकि वो अब्दी है। और यही एक रास्ता है जिससे हम फना होने से बच सकते हैं, और खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हम में अब्दी जिंदगी का होना जरूरी है। जिस तरह आज सुबह मैंने पैगाम में कहा था, जब हम गुनाह में मरते हैं तो फिर हम अपने पदेशी हक को बेच देते हैं और उस गड़े से पार हो जाते हैं। अब देखें, फिर हम खुदा की हजूरी से उस गड़े की दूसरी जानिब निकल जाते हैं। बेशक, अब देखें, जब मौत आदम पर आ गई तो वो मौत सारी मखलूकात पर आ गई। अब उसे आजाद मर्जी रखा गया था, जिस तरह हम हैं उसी तरह उन्हें भी इंतखाब करने के लिए आजाद मर्जी रखा गया था। अब देखें, इब्तदा ही में आदम हवा के सामने नेको बद का एक दरख्त मौजूद था, और बिल्कुल वैसा ही दरख्त हर एक के सामने मौजूद है, और हम में से हर एक के सामने मौजूद है। देखें, खुदा ने आदम और हवा के लिए ही सिर्फ ऐसा नहीं किया। आप कहते हैं खैर ये उनकी गलती थी, नहीं, क्या अब ऐसा नहीं है? अब ये आपकी गलती है। अब देखें, आप आदम पर इस बात को नहीं डाल सकते, बल्कि इस बात को अपने ऊपर रखें, क्योंकि अब भी आपके सामने नेको बद मौजूद है, क्योंकि हम भी उसी मकाम पर मौजूद हैं जहां आदम और हवा थे। लेकिन आप गौर करें, जब हम मखलसी पा लेते हैं तो फिर हम मजीद अपना इंतखाब नहीं चाहते, बल्कि फिर हम उसका इंतखाब चाहते हैं। समझे? अब आदम और हवा अपना इंतखाब करना चाहते थे, वो मालूम करना चाहते थे कि हिकमत के वसीले क्या होता है, वो उसे चाहते थे, बस उन्होंने उसकी खोज लगाई और उसकी बदौलत मौत आई। और जब एक आदमी को फिदिया के वसीले छुड़ा लिया जाता है तो फिर वो अमदाद के लिए कोई फिक्र नहीं करता, फिर वो दुनिया की हिकमत और दुनिया की चीजों के लिए कोई फिक्र नहीं करता, वो किसी भी तरह से कोई इंतखाब नहीं करता, बल्कि मसीह ही उसका इंतखाब होता है, और यही उसका सब कुछ है, इसलिए तो वो निजात याफ्ता है। वो मजीद अपनी रहनुमाई नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कोई उसे बताए कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है, वो सिर्फ इंतजार करता है और अपने बनाने वाले के इंतखाब का मुंतजिर रहता है। समझे? और जब उसका बनाने वाला उसे बताता है कि जा, तो फिर वो अपने बनाने वाले के नाम में जाता है। समझे? लेकिन इंसान हिकमत को तलाश कर रहा है और उसे पाना चाहता है। ठीक है, ये पैरिश बड़ा अच्छा है, लेकिन उस जगह वो मुझे इससे ज्यादा पैसे देते हैं, बस मैं वहाँ जाऊँगा। समझे? ऐसी हिकमत पर गौर करें। अब आदम ने खुदा के कलाम को थामने की बजाय अपनी बीवी के दलाइल सुनने से गुनाह किया, और यही बात थी जिसने आदम को गुनाहगार बना दिया, और उसकी बीवी ने शैतान के साथ दलील बाजी की, और फिर आदम के लिए ये सौगात पैदा हो गई, और उसके बाद आदम कलाम से हट गया और उसे बेच दिया। इस तरह उसने अपनी मेरास को खो दिया, उसने अपनी रफाकत और जिंदगी के हक को खो दिया। याद रखें, लिखा है, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा, और जब उसने अपनी जिंदगी को खो दिया तो उसने जिंदगी के साथ अपनी मेराज को भी खो दिया, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर जमीन पर बा इख्तियार था, वो जमीन का खुदा था। खुदा हर जगह कायनात का खुदा है, लेकिन उसने अपने बेटे को ये जमीन दी थी जो उसके बेटे के कंट्रोल में थी। वो कलाम कर सकता था, वो नाम रख सकता था, वो कह सकता था, वो फितरत को रोक सकता था, वो जो भी करना चाहता वो कर सकता था। समझे? लेकिन जब उसने गुनाह किया तो वो अपनी मेराज को खो बैठा। अब आदम कह सकता था, ए पहाड़ यहाँ से सिरक जा और वहाँ उस जगह चला जा, और वैसा ही होता। आदम कह सकता था, ए दरख्त यहाँ से उखड़ जा और वहाँ जाकर लग जा, और ऐसा ही होता। समझे? क्योंकि उसके पास मुकम्मल तौर पर आला इख्तियार था, जिस तरह के वो हमारे बाप खुदा के तहत एक असगर खुदा था, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। अब क्या यहाँ हम एक मिनट के लिए रुक नहीं सकते ताकि एक हकीकी मजमून को हासिल करें? समझे? ओ, फिर अगर खून ने उसे पीछे पाक कर दिया था तो अब क्या ख्याल है? समझे? अब देखें, खुदा के बेटे यानी दूसरे आदम ने क्या किया? समझे? उसने कहा, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। देखें, आदम ने अपनी मेराज जमीन को खो दिया। अब देखें, ये उसके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चली गई थी, जिसको उसने ये बेच दी थी, यानी शैतान के हाथ में चली गई। उसने अपने ईमान को, जो खुदा पर था, शैतान के दलाल के बाइस फरोख्त कर दिया। इसलिए वो अपनी अब्दी जिंदगी और अपना हयात के दरख्त का हक और अपना जमीन का हक, जो कि उसका था, वो उसे शैतान के हाथों जब्त करवा बैठा। वो इसे अपने हाथ से निकालकर शैतान के हाथ में दे चुका। इसलिए अब ये ऐसी हो गई है, क्योंकि वो आया और इसे आलूदा कर दिया, और आदम की नस्ल ने उस मेराज को जो आदम के पास थी, यानी इस जमीन को तबाह कर दिया। आदम की नस्ल पर गौर करें, ये सच है। मैं यहाँ जरा ठहरता हूँ। किसी रोज ट्यूसान में, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ ऊपर पहाड़ की बुलंदी से नीचे देख रहा था और किसी से बात कर रहा था। मैंने कहा, आप क्या सोचते हैं कि 300 साल पहले जब पुराने इंडियन लोग यहाँ अपने घोड़े गाड़ियों पर बैठकर अपनी बीवी बच्चों के साथ आए थे, और कहीं ना कहीं से वो लंबा सफर करके यहाँ आकर बस गए थे। वो पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे, और कोई जनाकारी नहीं थी, कोई शराब नोशी नहीं थी, कोई जुएबाजी नहीं थी, बल्कि उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। वो साफ सुथरी जिंदगी गुजार रहे थे, और भेड़िए वहाँ आकर नहाते थे, और हर रात वो ट्यूसान में चीखते और चिल्लाते थे, और नागफैनी और फलीदार पौधे फूल की तरह किनारों के चारों तरफ खिले हुए थे, और यहोवा ने जब नीचे निगाह की और देखा तो जरूर मुस्कुराया होगा। लेकिन फिर उस राह पर ये गोरा आ गया, और उसने क्या किया? उसने नागफैनी को उखाड़ डाला, और उसने मुल्क को बियर के डब्बों और विस्की की बोतलों से आलूदा कर दिया। उसने कौम की इखलाकियात को बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे वो इंडियन को हलाक कर सकता था, और वो उनकी खुराक थी, जो कि भैंसें थी। किसी रोज जब मैं म्यूजियम में था, तो टोम स्टोन की तख्ती पढ़ रहा था, और वहाँ मैंने जेरेनमो की तस्वीर देखी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों की सोच है कि जेरेनमो एक तारीकुल दीन था, लेकिन मेरे नजदीक वो एक असल अमरीकी था। वो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा था, जो खुदा ने उसे दिया था, एक सरजमीन के लिए और एक कौम के लिए और एक जगह के लिए, ताकि वहाँ जिंदगी गुजार सके। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाता। और जब ये गोरे सिपाही वहाँ आए और ताकत के जरिए उस सरजमीन पर कब्जा कर लिया, तो मक्खियों के झुंड की तरह उन्हें मारना शुरू कर दिया। वहाँ जेरेनमो के मेडिकल हेडक्वार्टर या उसके अस्पताल की असल तस्वीर मौजूद है, और वहाँ दो या तीन कंबल फलीदार पौधे के टुकड़े पर लटके हुए थे, और उन्हें घायल किया गया, जो कि असल और हकीकी अमरीकी और इंडियन लोग थे, और अपने खुदा के दिए गए हकूक के लिए लड़ रहे थे। और वहाँ जेरेनमो अपनी एक बच्ची के साथ, जो कि उसके अपने पहलू पर थी, वहाँ खड़ा हुआ। वो अपने जंगजुओं को देख रहा था, जिनका खून बह रहा था और वो मर रहे थे, और उसके पास कोई पेंसिलीन या कुछ और नहीं था, और ना ही उनकी मदद करने का कोई तरीका था। वो असल और खुदा के बख्शे गए अमरीकी थे, और फिर भी उसे एक तारीकुल दीन कहा जाता है, जबकि मैं उसे एक शरीफ आदमी कहता हूँ। लेकिन उन्होंने हथियार ना डाले, वो एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन अमरीकी आर्मी ने उन सब को जेल में बंद कर दिया, और फिर वहाँ गए और भैंसों को हलाक कर दिया। वो घूमने फिरने के लिए तेज दरियाफ्त करदा बेफलो राइफल लिए हुए वहाँ गए, और जब वो वहाँ गए तो आपस में कहते थे, ओ, आज मेरा बड़ा अच्छा दिन था, क्योंकि एक बॉक्स कार या मुसाफर गाड़ी की एक तरफ से गोलियां बरसाई, और कहते थे, आज मैंने 40 को हलाक कर दिया है। 40 भैंसे, जो कि इंडियन लोगों के पूरे कबीले की कफालत के लिए 2 साल या इससे भी ज्यादा वक्त के लिए होती थी। देखें, इन्होंने उनके साथ क्या किया, और उन जानवरों को वहाँ बियाबान में छोड़ दिया, और उन जानवरों के मुर्दा बदन उसी जगह पर पड़े रहे, जिससे वो जगह बदबूदार हो गई, और फिर भेड़िए उन्हें खा जाते थे। लेकिन जब इंडियन किसी भैंस को हलाक करते थे, तो वहाँ एक मजहबी तकरीब करते थे। वो उसके खुर लेते और उन्हें बर्तन बनाने के लिए महफूज कर लेते थे, और वो उसका गोश्त खाते, हत्ता के वो गोश्त भी जो अंतड़ियों में होता था। वो उसका सारे का सारा गोश्त लेते और उसे ऊपर लटका देते थे, और उसे खुश कर लेते थे, और उसकी खाल को खुश कर लेते थे, और वो उससे कपड़े और टेंट बनाते थे। वहाँ कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन फिर सफेद फार्म आदमी आया, और सफेद फार्म आदमी ही तारीकुल दीन है, ये दगाबाज है। और जब ये आदमी आया, तो इसने उन भैंसों को हलाक कर दिया, और उन इंडियन लोगों को फाकों से मरने के लिए छोड़ दिया। कोई भी असल इंसान अपने खुदा के दिए गए हकूक के लिए लड़ेगा। ये अमेरिका के परचम पर एक धब्बा है। इन्होंने उन अमेरिकन इंडियन लोगों के साथ क्या किया है? इस सब के बावजूद भी ये देश उनका नहीं है। क्या आप सोचेंगे अगर जापान या कोई और जैसे कि रूस यहाँ आ जाए और हम कहते हैं यहाँ से चले जाओ, यहाँ से वापस चले जाओ, और क्या तुम हमारे और हमारे बच्चों के साथ वैसे ही सलूक करना चाहते हो जो हमने उन इंडियन लोगों के साथ किया था? लेकिन याद रखें, जो कुछ हमने बोया है अब वही काटने जा रहे हैं, और आप जानते हैं यही खुदा का कानून है, क्योंकि लिखा है बोने का एक वक्त है और फिर काटने का एक वक्त है। मेरा ख्याल है ये बहुत बुरा है। जी हाँ जनाब, अब देखें क्या हुआ। आदम की आलूदा नस्ल ने सब कुछ आलूदा कर दिया और इस जमीन को यकीनी तौर पर बर्बाद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि बाइबल ऐसा कहती है, चूंकि आदम ने और उसकी आलूदा नस्ल ने ऐसा किया, इसलिए खुदा इन्हें बर्बाद कर देगा। क्या आप इस बात को पढ़ना चाहते हैं? आए देखते हैं, मैंने इसे यहाँ लिख रखा है। मुकाशवा के 11वें बाप की तरफ आते हैं और ये बात हम वहाँ पाएंगे। मुकाशवा के 11वें बाप में चलते हैं और हम देखेंगे खुदा ने उन लोगों के मुतल्लिक क्या कहा है जो जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। 11वां बाप और इसकी 18वीं आयत को लेते हैं। मेरा ख्याल है यही है 11:18। हम यहाँ पर हैं।
And the time of the dead that they should be judged.
और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ। अब खुदा के गजब पर गौर करें, और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। वो क्या करने जा रहे हैं? देखें, जो बोया वो ही काटेंगे यकीनन, क्योंकि आप गुनाह को सड़कों पर दौड़ते हुए देखते हैं। देखें इस इतवार की रात किस कदर और आज रात इस शहर में किस कदर ज्यादा लोग जनाकारी में मसरूफ होंगे, और कितनी ज्यादा औरतें अपनी शादी की कसम को इस जमीन के छोटे से हिस्से बनाम जेफरसन व्हील में तोड़ देंगी। आप इन 30 दिनों के अंदर कितने असकाते हमल के केसेस के बारे में सोचते हैं जो शिकागो शहर के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे? तकरीबन 25,000 से 30,000 के दरमियान एक महीने में दर्ज होते हैं, उन लोगों के अलावा जिन्हें दर्ज नहीं किया जाता। और कितने ज्यादा लोग शिकागो शहर में विस्की पीते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि एक रात में लॉस एंजलस में क्या कुछ होता है? और देखें, आज जेफरसन व्हील शहर में कितनी मर्तबा खुदावंद का नाम बेफायदा लिया जाता है। क्या अब ये बेहतर है या क्या ये तब बेहतर था जब जॉर्ज रोजर क्लॉक बेड़े पर आया था? अब देखें, हमने अपनी नापाकी के साथ इस जमीन को मुकम्मल तौर पर आलूदा कर दिया है, और खुदा उनको बर्बाद करेगा जो इस जमीन को बर्बाद करते हैं। खुदा ने ऐसा कहा है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कोई चीज मुझ में है जो मुझे पहाड़ों पर जाने के लिए माइल करती है ताकि खुदा की चट्टानों पर नजर करूं। मैं फ्लोरिडा से नफरत करता हूँ जहाँ उन्होंने खजूरों के मस्नूई दरख्त लगा रखे हैं, और हो मेरे खुदाया, बल्कि इसकी बजाय मैं बियाबानों में मगरमच्छों को अपनी दुमों को झटका देते हुए देखना पसंद करूंगा। इससे भी ज्यादा वो सब कुछ देखें जो वहाँ पर है, और वो बेकार चीजें जो हॉलीवुड में है, और वहाँ वो सब बनाव सिंगार करने वाले और शराबियों के टोले मौजूद हैं, और हो मेरे खुदाया, मेरा ख्याल है किसी दिन कुछ होगा। जी हाँ, लेकिन याद रखें, बाइबल ने हमें मत्ती के 5वें बाप में बताया है हलीम जमीन के वारिस होंगे। ये सच है, हलीम और फरोतन जमीन के वारिस होंगे। यीशु ने कहा मुबारक हैं वो जो हलीम है, सादा लोग हैं जो बहुत बड़ी चीज बनने की कोशिश नहीं करते, वो जमीन के वारिस होंगे। यीशु ने ऐसा ही कहा है। जी हाँ, अब देखें, जो जमीन को आलूदा करते हैं खुदा उनको बर्बाद कर देगा, लेकिन जमीन को पाक करने के बाद हलीम इसके वारिस होंगे। अब देखें, ओ मेरे खुदाया, अब वो जब्त शुदा दस्तावेज की किताब असल मालिक कादर मुतलिक खुदा के हाथ में है, यानी जमीन की दस्तावेज की और अब्दी जिंदगी की दस्तावेज की किताब, क्योंकि आदम इसे जब्त करवा बैठा था। बस शैतान के गंदे हाथ इस किताब को नहीं ले सकते थे, इसलिए ये वापस अपने असल मालिक खुद खुदा के पास चली गई है। हम बस इसे एक मिनट में देखेंगे। वो तख्त पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में ये दस्तावेज की किताब मौजूद है। हो, मैं इसे जोश महसूस करता हूँ, क्योंकि ये अबदी जिंदगी की दस्तावेज की किताब है और अबदी जिंदगी की मलकियत को जाहिर करने वाली किताब है। और जब आदम इस किताब को हिकमत हासिल करने के बदले में जब्त करवा बैठा बजाय इसके कि वो अपने ईमान पर रहता, तो उस वक्त ये वापिस अपने असल मालिक कादर मुतलिक खुदा के हाथ में चली गई। कैसी अजीम बात है। ठीक है, इंतजार हो रहा है। ये क्या कर रही है? ये वहाँ खुदा के हाथों में मखलसी के दावे के लिए इंतजार कर रही है, क्योंकि उसने मखलसी का एक तरीका तैयार किया है, उसने वापसी का एक रास्ता बनाया है, और किसी रोज मखलसी देने वाला इसे वापस ले लेगा। अब देखें कि अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। हम उस तख्त पर बैठे हुए शख्स को देखेंगे। ठीक है, ये अपनी मखलसी और मखलसी के दावे के लिए इंतजार कर रही है। ये दस्तावेज और दस्तावेज की मलकियत को जाहिर करने वाली किताब है। यानी ये मखलसी की किताब क्या है? आप कहते हैं मलकियत को जाहिर करना क्या है? एक मलकियत को जाहिर करने का क्या मतलब है? मतलब है इसके पिछले तमाम तरीके को तलाश करना जहाँ से इसका आगाज हुआ था। बिल्कुल, जिस तरह के आज सुबह उस स्याही के कतरे के मुतल्लिक बताया गया था कि जब वो उस रंग काट में गिरता है तो वो अपनी पिछली सूरत में तब्दील हो जाता है। और जब गुनाह का इकरार किया जाता है और यीशु के लहू में डुबो दिया जाता है, ओ मेरे खुदाया, तो फिर वो एक मलकियत देता है जो ठीक पीछे सीधी एक बार फिर खालिक से जा मिलती है, और आप खुदा के बेटे बन जाते हैं। और मलकियत की दस्तावेज को जाहिर करने वाली किताब कादरे मुतलिक के हाथों में है। ओ मेरे खुदाया, इस मखलसी का मतलब है कि वो तमाम कानूनी कब्जा, वो सब कुछ जो आदम और हवा के जरिए खो चुका था, ओ मेरे खुदाया, तो फिर एक नए सिरे से पैदा शुदा मसीही के लिए ये क्या करता है? ये उस मलकियत की दस्तावेज की किताब पर काबिज होना है और अबदी जिंदगी को जाहिर करना है। मतलब है कि आप उस सब कुछ के मालिक हैं जो आदम और हवा ने खो दिया था। वो भाई जी, इसके मुतलक क्या ख्याल है? उस दस्तावेज का मालिक होना। आदम मखलसी की मांगों को पूरा नहीं कर सकता था, बजाय इसके वो तलाश करता, वो इसे खो चुका था क्योंकि वो गुनाह कर चुका था और वो खुद को खुदा से अलग कर चुका था और वो गड़े के उस पार जा चुका था, इसलिए वो इसे मखलसी नहीं दिला सकता था। वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसको खुद मखलसी की जरूरत थी। बस वो ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन शरीयत एक करापती छुटकारा देने वाले की मांग करती है। खुदा की शरीयत एक करापती छुटकारा देने वाले की मांग करती है। आप चाहें तो इस पर निशान लगा लें, करापती छुटकारा देने वाला। इस बात को अखबार 25 में तलाश करें। हमारे पास इस बात को मुकम्मल तौर पर बयान करने का वक्त नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हर एक मजमून एक रात ले लेगा, समझे। लेकिन खुदा की शरीयत एक इवजी हासिल करती है। अब देखें क्या होता अगर खुदा एक इवजी को लेकर पेश ना करता, लेकिन मोहब्बत ने खुदा को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। बस इंसान वापसी के रास्ते के बगैर था और उसके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं था, वो खो चुका था। लेकिन खुदा के फजल की बदौलत ये कराबती छुटकारा देने वाला यीशु मसीह की सूरत में मिल गया। शरीयत की ये मांग थी, बस फजल ने इसकी मांगों को पूरा किया। ओ कैसा हैरत अंगेज फजल है, कितनी सुरीली आवाज है। खुदा की शरीयत एक बेगुनाह इर्जी का तकाजा करती है, और बेगुनाह कौन है? और हर एक जिनसी तल्लुक से, बल्कि हर एक इंसान जिनसी ख्वाहिश से पैदा हुआ है, और सिर्फ एक ही था जो इस तरह पैदा नहीं हुआ था। और इंसान अबदी जिंदगी के हकूक और जमीन पर बादशाह करने के हकूक को खो बैठा था। हो, जब मैं इस हवाले के मुतल्लिक सोचता हूँ, क्योंकि तूने हमें खरीद कर खुदा के पास वापस पहुँचा दिया है, और हमें जमीन पर बादशाह और काहिन बना दिया है और हम जमीन पर बादशाही कर सकते हैं। ओ मेरे खुदाया, क्या ही आला बात है। चुड़ाने वाला क्राब्ती, हो देखें, यहाँ हम एक शानदार कहानी देखेंगे। अब गौर करें, शरीयत खोई हुई मलकियत को छुड़ाने के लिए एक छुड़ाने वाले कराबती का तकाजा करती है और फजल के वसीले ये तकाजा यीशु मसीह की शख्सियत में पूरा होता है, क्योंकि कराबती को जरूर ही नस्ल इंसानी से होना चाहिए था। अब देखें, हम कैसे हो सकते हैं जबकि हर इंसान को इस तरह पैदा होना पड़ा था, और क्या कोई भी देख नहीं सकता वहाँ जिनसी अमल हुआ था? ठीक है, वरना वो आदमी मुकम्मल तौर पर अंधा है। गौर करें, क्योंकि हर इंसान जो पैदा होता है वो एक औरत से पैदा होता है, जबकि खुदा एक छुड़ाने वाले कराबती की मांग करता है और उसे भी जरूर एक इंसान होना चाहिए। ओ मेरे खुदाया, अब आप क्या करने जा रहे हैं? देखें, क्योंकि शरीयत एक छुड़ाने वाले कराबती का तकाजा करती है। अब वो एक फरिश्ते को नहीं ले सकता था, उसे एक इंसान को लेना था, क्योंकि हम फरिश्ते के कराबती नहीं है, हम एक दूसरे के कराबती हैं। क्योंकि फरिश्ता कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ मखलूक होते हुए एक मुख्तलिफ बदन रखता है, इसलिए वो गुनाह या ऐसा कोई काम नहीं करता, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ मखलूक है। लेकिन शरीयत एक छुड़ाने वाले कराबती का तकाजा करती है, और जमीन पर रहने वाला हर इंसान जिनसी ख्वाहिश से पैदा हुआ है। अब क्या आप देखते नहीं है कि ये कहाँ से आया है? ये वहाँ से आया जहाँ से गुनाह का आगाज हुआ था। बस आप देखें कि अब ये किस मकाम पर है। देखें, ये सांप की नस्ल में से आया है, समझे? अब गौर करें कि एक छुड़ाने वाले कराबती की मांग है, और छुड़ाने वाला बल्कि छुड़ाने वाले कराबती को जरूर ही नस्ले इंसानी से पैदा होना है। और यहाँ हमें ये बात तो एक शाक पर ही छोड़ जाती है, लेकिन मैं आपके लिए नरसिंगा फूंकता हूँ और कुंवारी से पदेश ने इस चीज को पैदा किया। आमीन। कुंवारी से पदेश ने हमारे छुड़ाने वाले कराबती को पैदा किया, कोई और नहीं बल्कि कादर मुतलिक खुदा इमैनुएल बन गया, जो हम में से एक बन गया। इमैनुएल, छुड़ाने वाला कराबती मिल गया। आप देखें कि खुदा ने कैसी मांग बनाई। इस सिलसिले में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर फजल ने इसमें मदाखलत की और इसमें शरीयत का साया है, और फिर इस चीज को पैदा किया। आमीन। हो, जब आप घर जाएंगे और जब मैं वहाँ अपनी छोटी सी झोंपड़ी में जाऊँगा जिसके बारे में भाई नेवल गाते हैं, जब आप सब वहाँ किसी सुबह किसी को ये गाते हुए सुनेंगे, कैसा हैरत अंगेज फजल है, कैसी सुरीली आवाज है कि उसने मुझ जैसे बदबख्त को बचा लिया, तो आप कहेंगे खुदा की तारीफ हो, आखिर बूढ़े भाई ब्रहनम ने गा लिया, देखो वो यहाँ है। जी हाँ, ओ ये फजल है जिसने मेरे दिल को खौफ के मुतालिक सिखाया, ये फजल है जिसने मेरे दिल को खौफ से आजाद कराया। और जब मैं पहली घड़ी ईमान लाया तो उस फजल ने जाहिर किया कि कैसा अनमोल काम हुआ है। इंतजार करें जब तक हम इसे एक लम्हे में हासिल नहीं कर लेते। ओ मेरे खुदाया, अब देखें ये किताब, बल्कि रूत की किताब हमें इसके मुतालिक एक खूबसूरत तस्वीर मुहैया करती है, कैसे बोइज ने किया और नोमी अपनी जायदाद को खो चुकी थी। आप जानते हैं, क्योंकि आपने मुझे इस पर मुनादी करते सुना है, क्या आपने नहीं सुना? अगर आपने मुझे इस पर मुनादी करते सुना है तो फिर अपने हाथों को बुलंद करें। बस देखें, आप इस बात को समझते हैं। बॉयज को छुड़ाने वाला बनना पड़ा, और सिर्फ वही एक था जो ऐसा कर सकता था। उसी को एक कराबती होना था, क्योंकि वो एक कराबती करीबी था, और उसने नोमी को छुड़ाते हुए रूत को हासिल कर लिया। और बॉयज मसीह का नमूना था, और इसी तरह यीशु था। और जब उसने इसराइल को छुड़ाया तो उसने गैर कौम की दुल्हन को हासिल किया। बस फिर आप देखें ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। मुझे यकीन है इस पैगाम पर हमारे पास टेप मौजूद है, अगर आप इसे लेना चाहें तो यहाँ मौजूद है। अब ध्यान दें, अब उसे जरूरी कराबती होना था, इसलिए अब देखें, एक फरिश्ता ये नहीं कर सकता था, एक इंसान ये नहीं कर सकता था, उसे जरूर एक इंसान होना था, लेकिन वो जिंसी अमल से एक औरत से पैदा शुदा नहीं था, बस उसे कुंवारी से जन्म लेना था, इसलिए पाकरू ने मरियम पर साया किया। इसलिए यीशु यहूदी नहीं था और यीशु गैर कौम से नहीं था, यीशु खुदा था, यही सच्चाई है। उसका खून किसी भी जिंसी अमल से नहीं आया था, वो मुकद्दस और खुदा का तख्लीक करदा खून था। इसलिए हम किसी भी यहूदी के खून के वसीले नहीं बचाए गए और ना ही किसी गैर कौम के खून के वसीले बचाए गए हैं, बल्कि हम खुदा के खून के वसीले बचाए गए हैं। और ये बात बाइबल के मुताबिक है, क्योंकि ऐसा लिखा है, हम उसके वसीले बचाए गए हैं। बस आप देखें, यीशु खुदा था, वो कोई दूसरा कनून, तीसरा कनून या चौथा कनून नहीं था, वो एक शख्स था। देखें, वो खुदा था, वो इमैनुअल खुदा था। खुदा अपने जलाल से नीचे आया और खुद को जाहिर किया। मैं बूथ क्लोबोर्न की उस कहानी से मोहब्बत करता हूँ। वो कितना अजीम खूबसूरत गीत है। ये हमेशा जिंदा रहने वाली कहानी है कि वो अपने जलाल से नीचे आया। मेरा खुदा और निजात दहिंदा आया, और यीशु उसका नाम था। एक चरनी में पैदा हुआ, जो अपनों में गैर था, आंसुओं और दर्द और दुख से भरा हुआ एक शख्स था। ओ, कैसी अजीब इंकसारी है जिसने हमें छुड़ाया है। जब रात के अंधेरे में कोई कमजोर सी उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी, बेशकीमत खुदा मुहाफिज ने अपनी शानो शौकत को एक तरफ रख दिया और मोहब्बत करने को झुका और मेरी जान को बचा लिया। ओ, मैं उससे किस कदर प्यार करता हूँ, मैं उसकी किस कदर मदा करता हूँ। मेरी सांसों में, मेरे चमकने धमकने में, मेरे सब कुछ में, सब कुछ है। वो अजीम छुड़ाने वाला मेरा नजात दहिंदा बन गया। वो अजीम छुड़ाने वाला मेरा नजात दहिंदा बन गया, और खुदा की सारी मामूरी उसी में सुकूनत करती है। वही एक है जिसने उस मांग को पूरा किया। फजल की बदौलत यीशु मसीह की शख्सियत पैदा हुई, और हम इस बात को देखते हैं कि अब इस किताब, बल्कि खुदा ने अपने खेमे को फैलाया, जो खुदा से आया और एक इंसान बन गया। उसने अपनी सूरत को कादरे मुतलिक से एक इंसान की सूरत में बदल लिया, ताकि वो एक इंसान की सूरत लेकर मौत का मजा चख सके और इंसान को छुड़ा सके। बस इंतजार करें जब तक हम उसे देख नहीं लेते, जबकि लिखा है कोई इस लायक ना था। समझे? ठीक है। बाइबल में, रूत की किताब में, जैसा कि आपने पढ़ा है, और वहाँ आप एक शख्स को पाएंगे जो गोयल छुड़ाने वाला कहलाता था। GOEL, वो गोयल छुड़ाने वाला कहलाता था, या वो ऐसा एक शख्स था जो उन मांगों को पूरा कर सकता था। और गोयल जरूर ही ऐसा करने के काबिल था, और अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता था, और उसे क्राप्ती होना जरूरी था, या फिर उससे अगला क्राप्ती ऐसा कर सकता था। और खुदा जो रूह का बनाने वाला है, जब वो इंसान बन गया तो हमारा क्राप्ती बन गया, ताकि वो उस तरतीब में आए जहां वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले सके और कीमत अदा कर सके और हमें छुड़ाकर वापस खुदा के पास ले जा सके। ये बात है, ये छुड़ाने वाला है। अब मसीह ने हमें छुड़ाया है और अब हम छुड़ाए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसने अपनी मलकियत का दावा नहीं किया है। अब हो सकता है कि आप इसके साथ इत्तफाक ना करें, लेकिन देखें, सिर्फ एक मिनट इंतजार करें, हम गौर करेंगे। समझे? उसने इसका दावा नहीं किया है। देखें, अगरचे उसने मखलसी की किताब को लिया और सब कुछ जो आदम के पास था और हर वो चीज जो वो खो चुका था, मसीह वापस छुड़ाता है, और इसी तरह वो हमें भी छुड़ाता है, लेकिन अभी तक उस मलकियत को हासिल नहीं किया, और वो उस वक्त तक ऐसा नहीं कर सकता जब तक के मुकर्रा वक्त नहीं आ जाता। और फिर क़यामत होगी, और उसके बाद जमीन एक बार फिर नई हो जाएगी, और उसके बाद वो अपनी मलकियत को लेगा, क्योंकि जब उसने हमें छुड़ाया तब ही उसने अपनी मलकियत को पा लिया था, लेकिन वो उसका दावा मुकर्रा वक्त पर ही करेगा। हो मेरे खुदाया! और ये इस सात मोरों वाली किताब में जाहिर है, जिसके मुतल्लिक अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखें, ये सब कुछ मखलसी की किताब में आया होता है। अगर खुदा ने चाहा, तो वो सब कुछ जो मसीह आखिरी वक्त में आया करेगा, वो सब कुछ इस हफ्ते में हमारे लिए इन सात मोरों में आया करेगा। समझे? ठीक है, ये जाहिर होगा, और जैसे ही मोरें तोड़ी जाती हैं और हमारे लिए खोली जाती हैं, तो ये आया हो जाता है। इसके बाद हम मखलसी के इस अजीम मंसूबे को देख सकते हैं कि वो कब और कैसे मुकम्मल होने जा रहा है। अब ये सब कुछ इस वेद की किताब में छुपा हुआ है, और ये सात मोरों के साथ मोहर बंद है, इसलिए सिर्फ वाहिद बड़ा ही है जो इन मोरों को खोल सकता है। अब देखें, मैं माफी चाहता हूँ, हम महसूस करते हैं। अब देखें, अगर आप इसे कलामे मुकद्दस में देखना चाहते हैं, तो आप यर्मिया में इसको देख सकते हैं, और ये बात तलाश कर सकते हैं कि जब वो असीर होकर दूसरे मुल्क में जा रहा था, तो आप जानते हैं कि वो अपने चचा को लाया, बल्कि उसके चचा के बेटे के पास कुछ जायदाद थी, और वो गया और उसे मोहर बंद करवाया। और अगर हम इस सब को लें, इस तरह हमने इस बात को सात कलीसिय जमानों में भी देखा और ये मोहरें और दूसरी बातें वगैरह वगैरह वहाँ मौजूद हैं। आप देखें कि पुराने ऐदनामे में एक मोहर बिल्कुल इस तरह लिपटी होती थी और इस तरह यहाँ एक बेद होता था और वो बेद छुपा होता था, ठीक है। इस तरह ये चारों तरफ से मोहर बंद होती थी और वहाँ पड़ी होती थी और लिखा होता था फलां फलां दावा। इसके बाद अगला बेद जो लिपटा होता था कि ये जायदाद किसकी है, और उसके एक तरफ लिपटा होता था कि फलां फलां का दावा। और ये सिलसिला आगे बढ़ता जब तक कि वो एक तुमार की सूरत इख्तियार नहीं कर लेता था, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास इस तरह की किताबें नहीं होती थी। ये एक तुमार की सूरत में होता था, कितने इस बात से वाकिफ हैं। और इस तरह एक तुमार कहलाता था, ठीक है। और ये एक मोहर बंद तुमार होता था। आप एक को यहाँ से खोल सकते थे कि उसका भेद क्या था और फाड़ कर इसे खोलते और फिर आप देख सकते थे कि उसमें किस चीज का दावा किया गया था। और उसके बाद मजीद एक और को खोलते और फिर आप देख सकते थे कि उसमें क्या दावा किया गया था। और सारी बात सात मोरे हैं जिनमें खुदा के भेद पोशीदा हैं, जो बनाए आलम से पेशतर सब के सब वहाँ पर मोहर बंद कर दिए गए थे। और सात मुख्तलिफ मोहरों के जरिए अय्यां होते हैं। इसलिए अगर खुदा की मर्जी हुई और उसने हमें वापस इन मोरों की तरफ खींचा, तो फिर हम इस किताब को देखेंगे और फिर इस सब के बारे में बयान करेंगे कि ये क्या है, समझे हो। मुझे उम्मीद है कि हमारे पास अच्छा वक्त होगा। लेकिन उस वक्त तक मخلصी का बेद मोहर बंद है, क्योंकि ये किताब उस वक्त तक खोली नहीं जा सकती जब तक आखिरी फरिश्ते का पैगाम नहीं आ जाता। तो मार मौजूद है, हम जानते हैं कि ये वहाँ मौजूद था, और हम इस बात से वाकिफ हैं कि यही मخلصी थी, और हमें यकीन है कि यही मخلصी थी, क्योंकि यर्मिया ने कहा था इसे जरूर महफूज रखा जाए। आप इसे पढ़ें, उसने कहा था इसे मिट्टी के बर्तन में महफूज रखा जाए, समझे। ओ, कैसी खूबसूरत बात है जिसके मुतल्लिक हम कुछ देर बात कर सकते हैं। उस तुमार को मिट्टी के एक बर्तन में महफूज रखा गया था, एक ऐसा बर्तन जो जिस्म बन गया, तारीफ हो, मरा और फिर जी उठा। उसे मिट्टी के बर्तन में महफूज रख जब तक के खरीदो फरोख्त का वक्त ना आ जाए। ओ मेरे खुदाया, कैसी खूबसूरत बात है, ठीक है। अब देखें, इन तमाम पैगामात को इस मिट्टी के बर्तन में उस वक्त तक महफूज रखा गया जब तक के खुदा का मुकर्रा वक्त और आखिरी पैगंबर इस जमीन पर नहीं आ गया। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अंदाजा लगाया और कहा मैं जानता हूँ वो वहाँ है, मुझे यकीन है वो मौजूद है, वो उसके लिए लड़े और उसे सामने लाए और ऐसी चीजों को पैदा किया, और ईमान के वसीले उन्होंने उसका यकीन किया। लेकिन अब ये खुदा के हाथ की तस्दीक के वसीले है, मुकाशवा में हमारे लिए लाया जा रहा है। खुदा ने यूँ कहा है, उसने इसका वादा किया है। अब देखें, आए अब गौर करें, कहाँ हम इस वक्त कहाँ हैं? आए अब हम ऐद दो की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए कि पहली ऐद को पढ़े काफी वक्त हो गया है। लेकिन आए 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 ऐद दो को लेते हैं। अब देखें, हम अमूमन अगली एक ऐद पर ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोरें तोड़ने के लायक है। अब याद रखें, आए पहली ऐद को एक बार फिर पढ़ते हैं, बस हम इसे एक साथ लेते हैं। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक, वो खुदा है, वो कौन है? वो किताबे हयात को थामने वाला हकीकी असल मालिक है, उसने उसे पकड़ रखा है। खुदा ऐसा करता है क्योंकि जब आदम उसे जब्त करवा बैठा तो वो अपने असल मालक के पास वापस चली गई, इसलिए कि ये उसकी है। और यूहन्ना ने रोया में निगाह की और जो तख्त पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे सात मोहरें लगाकर बंद किया गया था। गौर करें, अंदर से भी। अब जब हम इन मोहरों को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इन मोहरों में से हर एक पूरी तरह वापस सीधी पीछे कलामे मुकद्दस में जा मिलती है, क्योंकि तमाम चीजें और तमाम वेद एक साथ ठीक यहाँ इन मोहरों में पड़े हैं, समझे। बाइबल का हर एक वेद इन मोहरों में पड़ा हुआ है, और मोहरें उस वक्त तक खोली नहीं जा सकती हैं। सिर्फ एक मिनट में मैं इसे यहाँ साबित कर सकता हूँ। तवज्जो दें, अब याद रखें कि ये किताब मोहर बंद है। देखें, यहाँ एक है, यहाँ है, और ये एक मोहर है, और दूसरी एक यहाँ लिपटी हुई है, और ये भी एक मोहर है, और इससे अगली एक यहाँ लिपटी हुई है, ये भी एक मोहर है। इस तरह ये मखलसी की एक किताब है और सारी मोहरें एक साथ मिलकर इसे किताब बनाती हैं और फिर इसे सात मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है और फिर इसके बाहर भी लिखा हुआ है जिसकी वजह से वो बंद है और मोहर का भेद अंदर की तरफ लिखा हुआ है और बाहर तो सिर्फ यूं लिखा है सफेद घोड़सवार या स्याह घोड़सवार या कुछ और, ये बाहर की तरफ लिखा है लेकिन पदैच से मुकाशवा तक पूरी किताब का भेद इन मोहरों में है और मखलिसी का मुकम्मल मंसूबा इन सात मोहरों में आया होता है। ओ, ये कितना अहम वक्त है, खुदा इसे समझने में हमारी मदद करे, समझे। अब देखें, एक जोर आवर फरिश्ता, अब ऐद दो में, फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस लायक है, किसके लायक, कौन इस किताब को लेने के लायक है। अब हमने इस बात को देख लिया है, इस वक्त ये किताब कहाँ है, अब ये अपने असल मालिक के पास है, क्योंकि ये खुदा के पहले बेटे जो के बनी नौ इंसान की नस्ल में से था, उस बेटे से ले ली गई थी। क्योंकि जब शैतान की बात सुनने की बदौलत वो अपने हकूक जब्त करवा बैठा तो उसने इसे छोड़ दिया। उसने क्या किया था, उसने खुदा के कलाम की बजाय शैतान की हिकमत को कबूल कर लिया था। अब क्या यहाँ हम एक मिनट के लिए रुक नहीं सकते। अब देखें, जैसे खुदा के बेटे खुदा के कलाम की बजाय इसके मुतल्लिक सेमिनरी का नजरिया लेंगे तो गौर करें, यही काम तो आदम ने किया था और अपने हकूक जब्त करवा बैठा था और जब उसने ऐसा किया तो वो सीधी वापस चली गई। क्या आप देख नहीं सकते कि वो जमाने कहाँ गुजरे हैं, समझे। यूं वो ठीक सीधी वापस असल मालक के हाथ में चली गई और यूहन्ना रूम में आ गया और आसमान पर खड़ा हुआ था। वो कलीसियाई जमानों के बाद उठा लिया गया था, गौर करें, कलीसियाई जमानों को देखा और उसके बाद चौथे बाप में वो ऊपर उठा लिया जाता है। उसने फरमाया, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। और उसने तख्त पर किसी को बैठे देखा जिसके हाथ में, बल्कि जिसके दाहिने हाथ में ये किताब थी। अब जरा इसके मुतालिक सोचें, और फिर इस किताब में मखलसी की दस्तावेज थी और इसे सात मोहरें लगाकर बंद किया गया था। और फिर एक फरिश्ता, बल्कि एक जोर आवर फरिश्ता बुलंद आवाज से ये मुनादी करता हुआ सामने आया कि कौन इस किताब को खोलने और लेने के लायक है, कौन मोहरों को खोलने के लायक है, कौन इस किताब को खोलने के लायक है। गौर करें, फरिश्ते ने उसके मुतालिक पूछा, यूहन्ना ने उसे देखा और उसने कहा, अब कौन इस लायक है, वो आए। ओ मेरे खुदाया, हो सकता है कि अब मैं जरा इसको इस तरीके से महसूस करूं। वो आए, फरिश्ते ने कहा, वो आए। यहाँ मखलसी की किताब है, यहाँ मखलसी का मनसूबा है, सिर्फ यहाँ ही वो तरीका है जिससे आप मखलसी पाएंगे, क्योंकि यहाँ सारे आसमान और जमीन की मखलसी की दस्तावेज की किताब है। वो सामने आए अगर आना चाहे, ओ मेरे खुदाया, अब बोले या फिर हमेशा के लिए खामोश रहे, वो सामने आए और इस किताब का दावा करे, कौन ऐसा करने के लायक है। और यूहन्ना ने कहा, कोई शख्स आसमान पर इस काबिल ना निकला और कोई शख्स जमीन पर इस काबिल ना निकला और कोई शख्स जमीन के नीचे जो कभी जिंदा था और मर गया था, कोई भी इस काबिल ना निकला, कोई शख्स इस काबिल ना निकला। फरिश्ते की पुकार एक कराबती छुड़ाने वाले के लिए थी ताकि वो सामने आए। खुदा ने कहा, मेरा एक कानून है कि एक कराबती छुड़ाने वाला इवजी हो सकता है। वो कराबती छुड़ाने वाला कहाँ है, कौन इसको लेने के काबिल है। और ये आदम से लेकर नबियों तक और वहाँ से लेकर रसूलों तक हत्ता के बाकी सबको देखा और कोई इस काबिल ना निकला। अब इसके मुतल्लिक क्या ख्याल है, ना कोई आसमान पर, ना कोई जमीन पर, ना कोई जमीन के नीचे, एलिया वहाँ खड़ा था, मूसा वहाँ खड़ा था और तमाम रसूल वहाँ खड़े थे, या वो सब लोग जो मर गए थे और तमाम मुकद्दस आदमी जैसे अय्यूब और बाकी दानिश्वर लोग, और हर एक वहाँ खड़ा था और हर कोई इस किताब को लेने और इसकी मोरे तोड़ने पर और इस पर नजर करने के काबिल ना निकला। अब पोप और बाकी सब कहाँ हैं? अब आपका बिशप कहाँ है? अब हमारी काबिलियत कहाँ है? हम कुछ भी नहीं है, ये सच है। उसने करापती छुड़ाने वाले को पुकारा, अगर वो आ सकता है तो कदम आगे बढ़ाए, लेकिन यूहन्ना ने कहा कोई शख्स इस काबिल ना निकला। ये नहीं, वहाँ कोई लायक नहीं था। अब जैसे एक फरिश्ता, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम कहेंगे जब्राइल या मिकाएल, लेकिन याद रखें उसे एक करापती होना था। याद रखें यूहन्ना ने यहाँ कहा है कोई भी MAN आदमी ना निकला, ना कोई फरिश्ता ना के सराफीम, उनमें गुनाह नहीं था, लेकिन वो एक दर्जे में थे, वो कभी नहीं गिरे थे, लेकिन इसे एक करापती छुड़ाने वाला होना था। कोई शख्स ना निकला, सबब ये है कि उनमें कोई ना छुड़ाया गया था, कोई शख्स उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। ओ कोई नहीं, मेरे खुदाया, बस उसने एक इंसानी करापती को लिया और उसने इसके लिए दरखास्त की, और उसने कहीं भी किसी को इस काबिल ना पाया, कोई इस काबिल ना था, ना कोई बिशप, ना कोई आर्च बिशप, ना कोई प्रीस्ट, ना कोई तंजीमी ढांचा, हत्ता के कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उनमें इतनी भी पाकीजगी नहीं थी कि उस किताब पर नजर कर सकें। मेरे खुदाया, यही वजह है कि ये काफी मजबूत बात है, लेकिन ये वो बात है जो बाइबल ने कही है। मैं तो सिर्फ इसका हवाला दे रहा हूँ जो यूहन्ना ने कहा, और बाइबल कहती है कि यूहन्ना जार जार रोया। मैं इसके बारे में इस तरह नहीं सोचता जिस तरह कुछ लोग सोचते हैं। एक मर्तबा एक शख्स को इस पर तालीम देते सुन रहा था, उसने कहा यूहन्ना इसलिए रोया कि उसने खुद को इस काबिल ना पाया। ओ रूल कुदुस के तहत कोई भी आदमी इससे मुख्तलिफ ही जानता होगा। गौर करें, खुदा की तहरीक के तहत जो आदमी है वो इससे मुख्तलिफ जानता होगा। लेकिन यूहन्ना जार जार रोया, मैं सोचता हूँ यहाँ कुछ है जिसके लिए वो रोया, इसलिए कि कोई भी इस लायक ना था जो इस मखलसी की किताब को खोल सकता, क्योंकि सारी मखलूकात खो चुकी थी। यहाँ किताब है, यहाँ वो दस्तावेज की किताब है, और ये सिर्फ करापती छुड़ाने वाले ही को दी जाएगी जो इसकी मांगों को पूरा कर सकता है। ये खुदा का अपना कानून है, और वो अपने कानून को जुटला नहीं सकता, बल्कि वो अपने कानून की नाफरमानी नहीं कर सकता, समझे। खुदा एक करापती छुड़ाने वाले का तकाजा करता है जो इस लायक था, जो इसको करने के काबिल था, जिसके अंदर ऐसा करने का मादा था। और फरिश्ते ने कहा अब उस करापती छुड़ाने वाले को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और यूहन्ना ने निगाह की, उसने जमीन पर नजर डाली, उसने जमीन के नीचे नजर डाली, और वहाँ कोई भी ना था, इसलिए कि मखलूकात और हर एक चीज खो चुकी थी। बिला शुबा इसलिए यूहन्ना जार जार रोया, क्योंकि हर एक चीज खो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि वो रोता ही रहा, बल्कि थोड़ी देर के लिए रोया, क्योंकि वहाँ खड़े हुए बुजुर्गों में से एक ने कहा यूहन्ना मत रो। ओ मेरे खुदाया, उसका रोना लंबा नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी देर का था। यूहन्ना ने सोचा ओ मेरे खुदाया, वो शख्स कहाँ है? वहाँ नबी भी खड़े हुए थे, जिस तरह मैं पैदा हुआ वो भी उसी तरह पैदा हुए थे, वहाँ दानिश्वर भी लोग खड़े हुए थे, वहाँ खड़े हुए थे। ओ वहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं एक ऐसा शख्स चाहता हूँ जो ये करने के काबिल हो, मैं एक ऐसा शख्स चाहता हूँ जो छुड़ा सकता हो, और उसने किसी को ऐसा ना पाया। बस यूहन्ना रो पड़ा, ओ हर एक चीज खो चुकी थी, और वो जार जार रोया, और वो परेशान हो गया, क्योंकि हर चीज सारी मखलूक और सब कुछ खो चुका था, तो भी वो किसी को तलाश ना कर सके। खुदा की तारीफ हो, वो किसी को भी तलाश ना कर सके जो इन मांगों को पूरा कर सकता, इसलिए कि तमाम बनी नौ इंसान और पूरा जहान और मखलूकात खो चुकी थी। हो हर एक चीज गिर चुकी थी, और मखलसी के हकूक और अब्दी जिंदगी के हकूक और रोशनी और वो तमाम हकूक जब्त हो चुके थे, और वहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इनकी कीमत अदा कर सकता। और यूहन्ना ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी इस काबिल ना था, और कोई इस किताब पर नजर करने के काबिल ना निकला। हो उसे एक इंसान होना चाहिए था। यूहन्ना जार जार रोया, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि सब कुछ खो चुका था। फिर उस सारे अजीम आसमानी लश्कर और चारों जानदारों के बीच में खड़े हुए उन बुजुर्गों में से एक की आवाज आई और कहा यूहन्ना मत रो। ओ मेरे खुदाया, देखे खुदा का फजल, यूहन्ना शिकस्ता दिल मत हो, मत रो। देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल और नस्ल है वो गालिब आया है। गालिब का मतलब है जिसके साथ कुश्ती की गई हो और वो गालिब आया हो। ओ मेरे खुदाया, देखें गतसमनी बाग के अंदर जब उसके चेहरे से खून टपक रहा था तो वो गालिब आ रहा था, समझे? ओ समझे, देख वो बब्बर जो यहूदा की असल है गालिब आया है, फतेहमंद हुआ है, बिल्कुल याकूब की तरह जो धोखे से दूसरे की जगह लेने वाला था। और जब याकूब ने उस फरिश्ते के साथ रابطہ हमवार कर लिया तो उसने कुश्ती की और फरिश्ते ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसने कहा मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसने उस वक्त तक उसे पकड़े रखा जब तक उसने वो सब कुछ हासिल ना कर लिया जो कुछ वो चाहता था, और उसका नाम दूसरे की जगह लेने वाले से तब्दील कर दिया, जिसका मतलब है धोखेबाज। तो फिर क्या रखा? फिर खुदा का शहजादा इसराइल रखा, क्योंकि वो गालिब आया था। और ये यहूदा के कबीले का बब्बर गालिब आया है। उसने कहा यूहन्ना मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है गालिब आया है, वो पहले ही फतेहमंद हो चुका है, उसने ये काम किया है। यूहन्ना वो गालिब आया है, वो ओ मेरे खुदा। उसने एक रंग काट बनाया है जो गुनाह को वापिस उन्हीं गंदे हाथों में उसकी हिकमत के साथ भेज देता है जिसने इस बनिनो इंसान को नपाक किया। जी हाँ जनाब, लेकिन जब यूहन्ना देखने के लिए मुड़ा तो उसने एक बरे को देखा जो कि बब्बर से बड़ा ही मुख्तलिफ था। उसने कहा बब्बर गालिब आया है। गौर करें, मैं यहाँ एक बार फिर इस बात को इस्तेमाल कर सकता हूँ कि खुदा सादगी में छुपा हुआ है। उसने कहा वो एक बब्बर है जो जानवरों का बादशाह है, वो बब्बर गालिब आया है, और बब्बर एक बहुत ही मजबूत जानवर है। मैं अफ्रीका के जंगलों में रहा हूँ और जिराफों को चीखते सुना है, और बड़े बड़े देव हैकल हाथियों को अपनी सूंडों को हवा में लहरा के वी 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 करते सुना है, और बियाबानों के वैश्यों को अपने जमे खून के गिर्द चीखते और पुकारते भी सुना है, और यहाँ तक के बमरे भी। मैं और बिली पोल वहाँ पर एक पुरानी सी जगह पर लेटे हुए थे जो लकड़ियों के साथ डांपी हुई थी, और थोड़े से फासले पर एक बब्बर को गरजते सुना, और हर एक चीज जो बियाबान में थी खामोश हो गई, हत्ता के बमरों ने भी शोर मचाना बंद कर दिया। ये बादशाह की गर्ज है। ओ ओ ओ मेरे खुदाया, मैं आपको बताता हूँ कि सारी तंजीमें और शक व शुबात जमीन पर गिर पड़ते हैं जब बादशाह गरजता है, तो हर एक चीज खामोश हो जाती है। और ये बादशाह है, ये उसका कलाम है। हो उसने कहा यूहन्ना फिक्र ना कर, मत रो यूहन्ना, शिकस्ता दिल ना हो, मैं तुझे यहाँ रोया में लाया हूँ, मैं तुझे कुछ दिखा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू पूरी तरह टूट गया है, क्योंकि तू जानता है कि कोई भी छुड़ाने वाला नहीं है, और हर एक चीज खो चुकी है, और कोई नहीं जो इन मांगों को पूरा कर सकता हो, लेकिन यहूदा के कबीले का बब्बर है। आप यहूदा के कबीले को जानते हैं, हमने तख्ते स्याह पर इसका मुतालिया किया था। आप जानते हैं यहूदा के कबीले का निशान एक शेर है, याद रखें, शेर और बछड़ा और वगैरह वगैरह, फिर इंसान नुमा सर और वगैरह वगैरह, और वो सराफीम उस कलाम को देख रहे थे, और जब के तमाम मरकस, मत्ती, लूका और यूहन्ना वो सब इमाल की किताब के चौगिर्द खड़े हुए थे। मैंने एक शख्स को, बल्कि एक बहुत बड़े खादम को ये कहते सुना। उसने कहा इमाल की किताब महज एक बार का काम कर रही है, ये तो पहली शाख थी जो कभी मुकद्दस कलीसिया ने निकाली। जी हाँ, जी हाँ जनाब, और फिर अगर वो कभी एक और शाख निकालती है तो वो भी बिल्कुल इसी किस्म की होगी। जी हाँ जनाब, अगर आप कुछ पैवंद शुदा शाखों को लें और देखें, वो लीमू पैदा करती हैं, हालांकि उसे माल्टे पैदा करने चाहिए, लेकिन समझे, लेकिन जब वो शाख अगर कभी दोबारा असल शाख निकलती है तो वो बिल्कुल असल की मानिद होगी। और मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, ये अनाजील वहाँ खड़े हुए उसकी मुहाफजत कर रहे हैं। एक इंसान की हिकमत, एक शेर की ताकत, एक बछड़े के काम, और एक चीते की, बल्कि उकाब की फुर्ती। जी हाँ, अनाजील वहाँ खड़ी हुई है, क्या कर रही है? याद करें जब हमने इनका मुतालिया किया था, और ये सब कुछ सात कलीसिया जमानों में है। अब देखें, उसने कहा यहूदा के कबीले का बब्बर, आखिर यहूदा ही में से क्यों? क्योंकि लिखा है यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, और ना इसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा जब तक शैलो ना आए। इसलिए वो यहूदा के जरिए आएगा और यहूदा के कबीले का निशान बब्बर शेर है जो गालिब आया है, वो फतामंद हुआ है। और जब उसने मुड़कर निगाह की ताकि देखे कि वो बब्बर कहाँ है, तो उसने एक बर्रा देखा। अजीब बात है कि एक बब्बर को देखने के लिए मुड़ा और एक बर्रा देखा, जबकि बुजुर्ग ने उसे बब्बर कहकर पुकारा था। लेकिन जब यूहन्ना ने निगाह की तो उसने एक बर्रे को देखा, एक बर्रा जो बनाए आलम से पेशतर ज़बह किया गया था। एक ज़बह किया हुआ बर्रा, ये क्या था? ये बर्रा क्या था? ये लहू लहान और घायल किया गया था एक बर्रा जो ज़बह किया गया था, लेकिन फिर जी उठा था और वो लहू लहान था। ओ मेरे खुदाया, है लोगो, तुम कैसे उस पर निगाह डालकर गुनाहगार रह सकते हो? देखें, एक बड़ा कदम बढ़ाता है, जबकि बुजुर्ग ने कहा था यहूदा के कबीले का शेर बब्बर, एक बब्बर गालिब आया है। और यूहन्ना ने निगाह की ताकि बब्बर को देखे, तो उसने एक बड़े को जख्मी और खून से लथपथ देखा, वो गालिब आया था। आप कह सकते हैं कि वो जंग में था क्योंकि वो ज़बह हुआ था, लेकिन वो फिर जी उठा। आप जानते हैं, यहाँ यूहन्ना ने इससे पहले उस बरे पर तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि इससे पहले उसका जिक्र नहीं किया गया था, कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए कि जब वो देख रहा था तो यूहन्ना ने सारे आसमान पर उसे नहीं देखा था, लेकिन यहाँ वो सामने आता है। तवज्जो करें, वो कहाँ से निकल कर सामने आया? वो कहाँ से आया? वो बाप के तख्त से निकल कर आया, जहाँ वो उस पर बैठा हुआ था जब वो ज़बह होकर दोबारा जी उठा था। लिखा है वो जी उठा और खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो शफायत कर रहा है। आमीन। और आज एक शफायती की हैसियत से अपने ही खून से लोगों की जहालत के लिए शफायत कर रहा है। अब देखें, वही एक है जिस पर मैं भरोसा कर रहा हूँ, और अब भी उस रंग कार्ड के साथ, गुनाह को माफ करने वाले रंग कार्ड के साथ ढका हुआ है। जब यूहन्ना ने उस बरे पर नजर डाली तो बरा ऐसा नजर आता था जैसे कि वो ज़बह किया गया हो, और फिर उसने गौर किया कि बरा घायल किया गया था और उसे चीरा और फाड़ा गया था और उसका खून बह रहा था, एक लहू लहान बरा जिसने हमारी जगह ले ली थी। क्या ये अजीब बात नहीं है कि एक सादे से बरे ने हमारी जगह ले ली, और उसने बरे को देखा कि वो बाहर निकलता है। यूहन्ना ने उसे इससे पहले नहीं देखा था क्योंकि वो पीछे अबदियत में शफायत कर रहा था और जाहिर कर रहा था कि वो सब जो खुदा के पास बकरों और बैलों की कुर्बानी के तहत आए थे, वो एक मुतबादल कुर्बानी के तहत आए थे। बस वो इसलिए कि वो उस कुर्बानी पर ईमान लाए थे जो उसकी निशानदही थी, और खून अभी तक बहाया नहीं गया था, बस वो वहाँ उनको साफ करने के लिए था। वो वहाँ मुझे और आपको साफ करने के लिए था, और ऐ खुदा, मुझे उम्मीद है कि वो आज रात भी वहाँ मौजूद है, क्योंकि हर एक गुनाहगार के लिए वो बरा ज़बह किया गया था। कैसे यहोवा उस खड़े हुए लहू लहान बरे के सिवा कोई और चीज देख सकता है? और अब बरा उस रोया में जाहिर होता है जिसको ज़बह किया गया था। तवज्जो दें, और वो बाप के तख्त से आता है। हो जरा सोचें, वो कहां से इस रोया में आगे बढ़ता है? वो जलाल में से आता है, जहां वो खुदा के दाहिने हाथ बैठा हुआ था। वो जलाल से यूहन्ना के सामने आ मौजूद हुआ। हो क्या आज रात ये हमारी गुनाहगार सोचों के लिए जलाली बात ना होगी कि हम इन्हें एक तरफ रख दें ताकि उसे कबूल कर लें? और इस तरह आज रात वो जलाल से निकलकर हमारी तरफ आएगा ताकि खुद को आप में से हर एक पर जाहिर करे। देखें, बड़ा शफायत के लिए जलाल में से निकलकर आगे बढ़ता है। ठीक है, ताकि अब वो अपने छुड़ाए हुओं के लिए दावा करे। वो वहाँ अपने शफायती काम के लिए पीछे था, लेकिन याद रखें, ये मोहरें पहले ही तैयार हैं कि खोली जाएं, और बर्रा खुदा के मकदस से बाहर सामने आ जाता है ताकि आगे बढ़े। इंतजार करें जब तक कि हम वहाँ नहीं पहुँच जाते जहाँ पर एक घंटे की بلکہ جہاں آدھے گھنٹے کی خاموشی چھائی ہوئی ہے اور مقدس سے دھواں اٹھ رہا ہے اور وہاں پر مزید شفاعت کا کام نہیں ہے، قربانی ہٹ چکی ہے، اب وہ عدالت کی جگہ بن گئی ہے اور وہاں پر مزید خون نہیں رہا کیونکہ لہو لہان برا وہاں سے جا چکا ہے۔ آپ اس وقت کا انتظار مت کریں۔ کیا آپ کو پرانے عہد نامے میں یاد ہے، جیسے ہی رحم گاہ سے خون ہٹ جاتا تھا تو وہ عدالت کی جگہ بن جاتی تھی، لیکن جب تک خون وہاں موجود رہتا تھا وہاں رحم موجود رہتا تھا، لیکن جب برا ہٹ گیا تو پھر وہ عدالت گاہ بن گئی۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شفاعت کر رہا ہے، کوئی اور شخص نہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں، مریم کہاں شفاعت کر سکتی ہے؟ مریم کیا پیش کر سکتی ہے؟ یا پھر سینٹ فرانسس، یا سینٹ اسیسی، یا کوئی اور، یا پھر سینٹ سیسلیا، بلکہ کوئی بھی بنی نو انسان کیا پیش کر سکتا ہے؟ یوحنا نے کبھی بھی ہزاروں مقدسین کو شفاعتی کے مقام سے آتے نہیں دیکھا، بلکہ اس نے ایک برا دیکھا، ایک ایسا برا جو ذبح کیا گیا تھا اور لہو لہان تھا۔ مجھے پرواہ نہیں چاہے کتنے ہی مقدسین ذبح ہو چکے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے، بلکہ انہوں نے اپنے کیے کا پایا، جس طرح صلیب پر ڈاکو نے کہا ہم نے گناہ کیا ہے اور ہم اس کی وجہ سے سزا پا رہے ہیں، لیکن اس آدمی نے کچھ نہیں کیا، صرف وہی ایک ایسا آدمی تھا جو اس لائق تھا۔ دیکھیں یہاں وہ اپنے شفاعتی مقام سے آتا ہے، اب وہ کس کام کے لیے آ رہا ہے؟ ذرا اس پر توجہ دیں۔ او میرے خدایا، یوحنا رو رہا تھا، اب یہ سب کہاں تھے، کیا ہونے لگا تھا؟ اور بزرگ نے کہا یوحنا مت رو، دیکھ یہاں ببر موجود ہے اور وہ غالب آیا ہے۔ اور جب اس نے نگاہ کی تو ایک لہو لہان برے کو آتے دیکھا جو ذبح کیا گیا تھا۔ کوئی بھی جو لہو لہان ہوتا ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اسے ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی گردن کو کاٹا جاتا ہے اور خون مکمل طور پر اس کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ اور یہاں ذبح کیا ہوا ایک برا آتا ہے اور وہ سامنے آیا۔ او میرے خدایا، کس لیے؟ تاکہ اپنے چھڑائے ہوئوں کے لیے اپنا دعویٰ کرے۔ آمین۔ ہو میں، کیا آپ اس طرح محسوس نہیں کرتے؟ آپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے روئیں۔ یہاں ایک برا آتا ہے جو ابھی تک لہو لہان ہے۔ یوحنا، وہاں اور کچھ نہیں تھا، جبکہ وہاں چاروں طرف تمام اہم شخصیات موجود کھڑی تھی، لیکن ان میں کوئی ایسا نہ تھا جو ایسا کر سکتا۔ بس اب دیکھیں، پھر برا آتا ہے، اس کے درمیانی کے دن یعنی شفاعتی دن ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب یہ فرشتہ کھڑا ہونے کے لیے جاتا ہے، بس آپ انتظار کریں جب تک ہم موروں میں نہیں آتے، لکھا ہے اور دیر نہ ہوگی، یہ سچ ہے۔ پھر آدھے گھنٹے کی خاموشی ہے اور خداوند کی مرضی سے اگلے اتوار کی رات جب اس ساتویں مور کو لیں گے تو توجہ دیں کہ اس آدھے گھنٹے کی خاموشی میں کیا ہوتا ہے۔ وہ سامنے آتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اب اپنا دعویٰ کرے۔ او میرے خدایا، اپنا دعویٰ کرنے کے لیے سامنے آتا ہے، اب دیکھیں، کیونکہ اس نے قرابتی کا کام کیا تھا اور وہ انسان بن کر نیچے آیا تھا اور مر گیا تھا، اور اس نے چھڑانے والے قرابتی کا کام ختم کر لیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اب وہ اپنے حقوق کے دعوے کے لیے منظر پر آتا ہے۔ توجہ دیں، کیا وقوع پذیر ہوتا ہے؟ ہو میرے خدایا، کیونکہ اس لیے وہ ذبح ہوا تھا، اس لیے وہ انسان کے لیے قرابتی بنا تھا تاکہ اس کی جگہ مرے اور اسے چھڑائے۔ لیکن بزرگ اس وقت درست تھا جب اس نے کہا وہ ایک ببر ہے، سمجھے؟ اس بزرگ نے اسے یوں پکارا اور کہا کہ وہ ایک ببر ہے، چونکہ وہ ایک شفاعت کرنے والے کے روپ میں لہو لہان برا تھا، لیکن اب وہ ایک ببر کی حیثیت سے سامنے آ رہا تھا کیونکہ اس کے شفاعت کے دن ختم ہو چکے تھے۔ لکھا ہے جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے، کیونکہ شفاعت کا کام ختم ہو گیا تھا۔ او بھائی، سوچیں پھر کیا ہے، پھر کیا ہے؟ اور یاد رکھیں، یہ ساتویں کلیسیائی زمانے میں ہوتا ہے جب خدا کے بید کھولے جائیں گے۔ اب بڑے دھیان کے ساتھ توجہ دیں، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، وہ اپنا درمیانی کا کام کر رہا تھا اور ایماندار کے لیے شفاعت کر رہا تھا، کیونکہ پچھلے 2000 سالوں سے وہ ایک برا تھا۔ اب وہ ابدیت سے باہر قدم رکھتا ہے، ताकि इस दस्तावेज की किताब को ले और मोहरों को तोड़े और वेदों को अया करे। ये कब होगा? आखिरी वक्त में। क्या आप इस बात को समझ गए? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखें, उसने मोहरों को तोड़कर तमाम वेद सातवें फरिश्ते को दे दिए हैं, बल्कि उस पैगाम से खुदा के सारे वेद अया हो जाते हैं, क्योंकि खुदा के वेद सात मोहरों में रखे हुए हैं। समझे? यही बात है जो उसने यहाँ कही है। तमाम वेद इन सात मोहरों में रखे हुए हैं, और अब बर्रा खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी होते हुए सामने आता है, और वो एक बब्बर बन जाता है। और जब वो एक बब्बर बन जाता है, तो फिर उस किताब को लेता है, और ये उसका हक है। और खुदा ने इन वेदों को रोक रखा था, लेकिन अब देखें, बर्रा सामने आता है। कोई उस किताब को नहीं ले सकता था। वो अब भी खुदा के हाथों में है। ना कोई पोप, प्रीस्ट या जो कोई भी हो, वो उस किताब को हरगिज नहीं ले सकता। सात मोहरों को अभी तक अया नहीं किया गया, समझे? लेकिन जब दरमियानी का, यानी जब उसका शफायत का काम खत्म हो जाता है, तो फिर वो सामने आता है। और यूहन्ना, बल्कि बुजुर्ग कहता है वो एक बब्बर है, और फिर वो सामने आता है। उस पर गौर करें, वो मेरे खुदाया, समझे? अब तवज्जो दें, वो सामने आता है ताकि उस किताब को ले और खुदा के वेदों को अया करे, क्योंकि इन तमाम तंजीमी जमानों में दूसरों ने सिर्फ इसका अंदाजा लगाया था। देखें, फिर सातवां फरिश्ता है। अब ये वेदों की किताब है जो कि खुदा का कलाम है, तो फिर सातवें फरिश्ते को एक नबी होना है, क्योंकि खुदा का कलाम नबी के पास आता है, ना कि पोप, प्रीस्ट या कोई और इसे हासिल कर सकता है। इसलिए कि कलाम ऐसे लोगों के पास नहीं आता, बल्कि हमेशा खुदा का कलाम सिर्फ एक नबी के पास आता है। मलाकी 4 ने इसका वादा किया है। और जब वो सामने आता है, तो वो खुदा के वेदों को लेगा, जबकि कलीसिया इन तमाम तंजीमों में कमजोर हो चुकी है। वो औलाद के ईमान को दोबारा वालदों की तरफ बहाल करेगा, और फिर दुनिया की अदालत होगी, और जमीन जलाई जाएगी, और फिर हजार साल बादशाहत में रास्तबाज शरीरों की राख पर चलेंगे। क्या अब आप इसको समझ गए हैं? ठीक है, देखें, इस तंजीमी जमाने में दूसरों ने सिर्फ इसका अंदाजा लगाया, लेकिन देखें, उसको ऐसा आदमी होना जरूरी है। और ये सातवां फरिश्ता मुकाशवा 10:1-4 और सातवें फरिश्ते के पास खुदा के वेद हैं, जो उसे दिए गए हैं, और वो उन तमाम वेदों को जो इन तंजीमी जमानों में छूट गए थे पूरा करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि मैं अपने उन भाइयों पर जो तंजीमों में हैं चोट नहीं लगा रहा, क्योंकि ये तंजीम के निजाम में जाहिर नहीं किया जा सकता, और उन्हें ऐसी कोशिश करने की जरूरत नहीं कि इसे जाने, क्योंकि इसे जाहिर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये बात कलाम के मुताबिक है। उन्होंने इस पर क्या सराय की और ईमान रखा कि वो वहाँ था, और ईमान के जरिए इसके साथ चले, लेकिन अब तो ये वाज़े तौर पर साबित हो चुका है। आमीन। ओ मेरे खुदाया, ये कैसा कैसा अजीम कलाम है। अब तवज्जो दें, देखें, फिर अब ये वो बरा है जो कि अपने बादशाही इख्तियार को लेता है, जब उसके मुकद्दसीन उसे ताज पहनाने आते हैं, जो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। समझे? देखें, वक्त खत्म हो चुका है। मुकाशवा 10:6 में लिखा है, अब और देर ना होगी। ध्यान दें कि उस बरे के सात सिंह हैं। क्या आपने इस बात पर तवज्जो दी है? सात सिंह हैं। हम इस बात को देख चुके हैं, और एक जानवर के लिए सिंहों का मतलब है ताकत। और गौर करें, वो एक जानवर नहीं था, क्योंकि उसने तख्त पर बैठे हुए उस शख्स के दाहिने हाथ से किताब को लिया था। समझे? ध्यान दें, ओ मेरे खुदाया, मुझे यकीन है कि मैंने इस बात को कहीं लिखा था। ओ, उसने मोहरों को तोड़ा और उस किताब दस्तावेज की किताब को खोला, और ये आखिरी फरिश्ते के लिए पैगाम था, और उसने अपना बादशाही मकाम लिया। अब यही काम है जिसे करने के लिए वो सामने आता है। अब तवज्जो दें कि जब वो बाहर निकला तो सात सिंह है। अब जब उसने उस बरे को देखा, यानी यूहन्ना, जब उस पर गौर कर रहा था, तो वो इस तरह लगता था जैसे ज़बह किया गया था और लहूलुहान था। वो अब्दियत से आता है, और अब वो मजीद एक दरमियानी नहीं रहा था। तो फिर आप जिस कदर चाहें मरियम से दुआ कर लें। लिखा है, कोई भी शख्स ना आसमान पर और ना जमीन पर इस लायक है कोई शख्स इस लायक नहीं, कहीं भी कोई इस लायक नहीं जो उस किताब को ले सकता। हत्ता के यूहन्ना इस बात के मुतल्लिक जार जार रोया। ओ कैथलिक दोस्तों, क्या आप इस बात को नहीं समझ सकते? किसी भी मुर्दा शख्स से मत दुआ करें, सिर्फ बड़ा ही दरमियानी है, समझे? सिर्फ वही वाहिद है जो सामने आया, और अब देखें उसने क्या किया। वो शफायत कर रहा है जब तक कि उसका खून हर एक शख्स के लिए कफारा नहीं बन जाता, और अब बड़ा ही जानता है कि उस किताब में क्या लिखा है। बस वो बनाए आलम से पेशतर ही उनके नामों को जानता था जो वहाँ थे, इसलिए वो यहाँ पीछे खड़ा था और इस तरह दरमियानी का काम कर रहा था। लेकिन उस वक्त तक दरमियानी का काम था जब तक कि वो हर शख्स जो इस किताब में मौजूद है छुड़ाया नहीं जाता, और फिर ये काम खत्म हो जाता है। और अब देखें वो बाहर निकलता है, देखें वो अपना कराबती का काम खत्म कर लेता है, वो मुकम्मल कर लेता है। आप जानते हैं कराबती का क्या काम था? बुजुर्गों के सामने सबूत दे। आपको याद है कि बॉयज ने अपनी जूती उतार दी थी और वगैरह वगैरह। अब उसने भी ये सब कुछ कर लिया था, अब वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। आमीन। अब वो एक बादशाह की हैसियत से आता है, इसलिए कि वो अपनी मलका के लिए मुंतजिर है। आमीन आमीन। और इस किताब में उसके सारे भेद हैं जो सात मोहरें लगाकर लपेट दी गई है। ओ भाइयों, सात मोहरें उसके आने का इंतजार कर रही हैं। गौर करें, आए इन अलामात को लेते हैं। खैर अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। आगे जाने के लिए हमारे पास 3 घंटे या मजीद वक्त है, हमारे पास है। आए देखते हैं। शैतान मुझे बता रहा है कि ये लोग थक चुके हैं, बस मेरा अंदाजा है कि ये लोग थक गए हैं, लेकिन आए आए किसी भी हाल में इस बात को लेते हैं। 7 सिंह 7 कलीसियाएं हैं। गौर करें, 7 कलीसियाएं जमाने हैं, क्योंकि ये बरे का तहफ्फुज था जो उसने अपने हकूक के साथ महफूज किया, और वो जमीन पर खुदा की तरफ से भेजा गया लोगों का एक ग्रोह था जिसे महफूज कर लिया गया। देखें ये बरे के सींग हैं, 7 आंखें 7 कलीसियाई जमानों के 7 पैंबर हैं, 7 आंखें 7 गैबीन हैं। क्या आप कुछ हवाले लिखना पसंद करेंगे? तो आए जरा इस तरफ मुड़ते हैं, क्या आप कहते हैं आपके पास काफी वक्त है? ठीक है, आए जिक्रिया की तरफ चलते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिक्रिया की किताब को लेते हैं और हम इसमें से कुछ पढ़ेंगे। मैं आपको इन बातों पर ज्यादा देर रोकना नहीं चाहता, और मैं लेकिन तो भी मैं नहीं चाहता कि आप इन बातों को खो दें। क्या कोई इससे ज्यादा भी अहम काम है? जी हाँ। अच्छा, इससे ज्यादा क्या है? क्या? क्योंकि एक इंसान के लिए अबदी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है, और हमें जरूर इसे हासिल करना चाहिए, और फिर मुतमिन होना चाहिए कि हमने इसे हासिल कर लिया है। ठीक है, ठीक है जनाब। और अब हम जिक्रिया के 3 बाब को पढ़ना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। अब जिक्रिया 3, हम इन अलामात को यहाँ से ले रहे हैं, अगरचे मैंने अपने हवाला जात लिख रखे हैं, और जब मैंने इस हवाले को लिया तो इस सपहर मैं तो बस उस जगह शोर मचा रहा था, बस मैं नहीं जानता कि आया मैंने इसे दुरुस्त तौर पर हासिल कर लिया है या कि नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मेरे पास मौजूद है। जिक्रिया 3, आए देखें, अगरचे यही है क्योंकि मैंने यहाँ 8-9 लिख रखा है, लेकिन इसे जरूर 8-9 होना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूँ ये 8-9 नहीं हो सकता। जिक्रिया 3:8-9। अब ए यशुआ सरदार काहिन, सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं, वो इस बात का ईमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाक को लाने वाला हूँ मसीह। क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशुआ के सामने रखा है, देख उस पत्थर पर 7 आंखें हैं। देख मैं उस पर कुंदा करूंगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकरदारी को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। अब आए जिक्रिया 4:10 की जानिब मुड़ते हैं। 4:10 सुने, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है? देखें खुदा सादगी में है, क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें हैं जो सारी जमीन की सैर करती हैं, खुशी से साउल को देखती हैं जो जरबाबल के हाथ में है। सात आंखें हैं। आंख का मतलब है देखना और देखने से मुराद है नबी, गैबीन। देखें, उस बरे के सात सिंह थे और हर सिंह पर एक आंख थी, सात आंखें। ये क्या है? मसीह और उसकी दुल्हन, सात कलीसिया जमाने, वहाँ से सात नबी निकले जो सामने आए, सात गैबीन जो आंखें हैं। बस आखिरी को भी एक गैबीन होना जरूरी है। ठीक है, तवज्जो दें, वो एक जानवर नहीं है। लिखा है, जो तख्त पर बैठा था उसने उसके दाहिने हाथ से उस किताब को लिया। वो कौन था? वो मालिक, बल्कि असल मालिक था, और उसके दाहिने हाथ में वो किताब थी। ना कोई फरिश्ता, ना कोई आसमानी मखलूक, ना ही कोई और इस लायक था जो उस मकाम को ले सकता, लेकिन ये लहूलुहान बड़ा बाहर निकला और उसके हाथ से किताब को ले लिया। ये क्या था भाई? ये बात कलामे मुकद्दस में सबसे ज्यादा बुलंदो वाला है। आमीन। एक ऐसा अमल जो किसी फरिश्ते का नहीं, ना ही किसी और का, जो ऐसा कर सकता था, बल्कि बर्रा आया जो तख्त पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से उसने किताब को ले लिया। ये क्या है? अब इसका ताल्लुक बरे के साथ है। आमीन। खुदा के कानून का तकाजा है, और वाहिद वो है जिसने उस किताब को थामा, इसलिए कि खुदा का कानून एक कराबती छुड़ाने वाले का तकाजा है। और बर्रा बाहर निकलता है और उसे थामता है। मैं इनका कराबती हूँ, मैं इनका कराबती हूँ, मैं आया हूँ, मैंने इनके लिए शफायत की है, और अब मैं इनके लिए इनके हकूक का दावा करने आया हूँ। आमीन। सिर्फ वही एक है। मैं इनके हकूक का दावा करने आया हूँ, इसलिए कि इनके पास हर एक चीज का हक है जो जवाल में खोदी गई थी, मगर मैंने उनकी कीमत अदा कर दी है। ओ भाई, क्या आपके अंदर इस बात से जोश पैदा नहीं हो जाता? हमारे अच्छे कामों की बदौलत नहीं, बल्कि उसके रहम की बदौलत। ओ, एक मिनट इंतजार करें। और उन बुजुर्गों और उन सब ने अपने ताज उतारना शुरू कर दिए। देखें, उन बुलंदो बाला मखलूकात ने जमीन पर झुकना शुरू कर दिया। कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता था। और वो सीधा खुदा के दाहिने हाथ की तरफ आता है और उसके हाथ से किताब को लेता है और अपने हकूक का दावा करता है। मैं इनके लिए मुआ, मैं इनका कराबती छुड़ाने वाला हूँ। मैं हूँ, मैं ही दरमियानी हूँ। मेरा खून बहाया गया, मैं इंसान बना, और मैंने ये इस तरतीब में किया ताकि कलीसिया को दोबारा हासिल कर लूँ। यही वो है जिसे मैंने बनाए आलम से पेशतर देखा। मैंने इसका इरादा किया, मैंने इससे कलाम किया, ये वहाँ होगी, और कोई इसे लेने के काबिल ना था, लेकिन मैं खुद नीचे आ गया और इसको मुकम्मल किया। मैं इनका कराबती हूँ, मैं कराबती बना हूँ, और वो किताब को लेता है। आमीन। हो, कौन आज रात मेरे लिए वहाँ इंतजार कर रहा है? और वो कौन सी कलीसिया है जिसका वहाँ इंतजार हो रहा है? वहाँ आपके लिए कौन इंतजार कर रहा है? वो कराबती छुड़ाने वाला है। ओ मेरे खुदाया, कैसा शानदार बयान है या अमल है। अब छुड़ाने के लिए दस्तावेज की किताब उसके पास है, उसने उसको अपने हाथ में थाम रखा है। अब दरमियानी का काम खत्म हो गया है, उसने उसको अपने हाथ में थाम रखा है। याद रखें, ये हमेशा खुदा के हाथ में था, लेकिन अब ये बरे के हाथ में है। अब देखें, तमाम मखलूकात की मखलसी की दस्तावेज की किताब उसके हाथ में है, और वो वापस इस नस्ल इंसानी के लिए दावा करने के लिए वापस आता है। उसने फरिश्तों को वापस लाने का दावा नहीं किया, बल्कि बनी नो इंसान को वापस लाने का दावा किया है, जिनका सब कुछ खो गया था, ताकि वो फिर से खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं और उन्हें वापस बागे अदन में, और हर वो चीज जो उनसे खो गई थी, जिसमें तमाम मखलूकात और दरख्त और जानवर और सब कुछ शामिल है। ओ मेरे खुदाया, क्या इससे आपको अच्छा महसूस नहीं होता? मैंने सोचा कि मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं अभी तक थका नहीं हूँ, समझे? बाज़ वक़्त मैं सोचता हूँ कि अब मुनादी करते हुए मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और फिर मैं कोई इस तरह की चीज होते हुए देखता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ दोबारा से एक जवान हो गया हूँ। जी हाँ, जी हाँ, वो आपके लिए कुछ करता है, समझे? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि वहाँ कोई है जो मेरे लिए इंतजार कर रहा है, वहाँ कोई है जिसने कीमत अदा कर दी है जिसे मैं अदा नहीं कर सकता था। ये सच है चार्ली, उसने ये मेरे लिए किया है, उसने ये तेरे लिए किया है, उसने ये सब नस्ल इंसानी के लिए किया है और अब वो अपने छड़ाए हुए हकूक का दावा करने के लिए सामने आता है। वो किसके लिए इसका दावा करता है? अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए, इसलिए कि वो हम में से एक है, वो हमारा कराबती है। ओ मेरे खुदाया, वो मेरा भाई है, वो मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा कराबती छुड़ाने वाला है, वो मेरा सब कुछ है, क्योंकि उसके बगैर मैं क्या था या उसके बगैर मैं क्या हो सकता हूँ। बस देखें, वो मेरा सब कुछ है और वो मेरे कराबती की हैसियत से वहाँ खड़ा है और अब वो हमारे लिए शफायत कर रहा है जब तक कि वो वक्त नहीं आ जाता। और अब वो सामने आता है और मखलसी की किताब को लेता है ताकि अपने हकूक का दावा करे जो उसने हमारे लिए किया है। वो मरते हैं, लेकिन यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है तो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो हरगिज ना मरेगा, और जो कोई मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर उठा खड़ा करूँगा। कोई मसला नहीं, चाहे वो पहली घड़ी में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में या सातवीं में सो गया है, चाहे वो किसी भी घड़ी में सो गया है, लेकिन क्या होगा, खुदा का नरसिंगा फूंका जाएगा, वो आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और ठीक उसी वक्त आखिरी फरिश्ता अपना पैगाम दे रहा होगा और आखिरी मोहर खुल जाएगी, और जैसे ही आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो मखलसी देने वाला सामने आ जाएगा और अपनी छुड़ाई हुई मलकियत को ले लेगा, यानी अपनी कलीसिया को जो खून से धुली है। अब देखें, ओ अब तमाम मखलूकात उसके हाथ में पड़ी हुई है जिसमें मखलसी का सारा मंसूबा सात बेदों वाली मोहरों के जरिए सरबामोर कर दिया गया है और इस किताब को उसने अपने दाहिने हाथ में लिया हुआ है। अब ध्यान दें, वो अकेला ही जाहिर कर सकता है जिस पर वो करना चाहे। देखें, उसने इस किताब को अपने हाथ में ले लिया है, अब उसने वादा किया है कि ये उस वक्त में होगा। अब देखें, क्योंकि इस मखलसी की किताब को सात बेद की मोहरों के जरिए सरबामोर कर दिया गया है। अब देखें, अब जैसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको 8:30 बजे तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैंने इस बात को हासिल करने के लिए 3 या 4 सफों को यहीं छोड़ दिया है। बस मैं चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मैं पहले ही 9 के बाद वाले हिस्से में चला गया हूँ, लिहाजा बाकी आप कल हासिल कर लें। लेकिन अब इस मोहरों की 7 तय वाली किताब में मखलसी का मंसूबा दर्ज है जो खुद बरे ने ली, क्योंकि वही एक था जो ऐसा कर सकता था और जो तख्त पर बैठा हुआ था, उसने उसके दाहिने हाथ में से इसे ले लिया। अब देखें, ताकि वो अपने छड़ाए हुओं का दावा करे और अपने हकूक का दावा करे और वो मेरे और आपके लिए दावा करे जो उसने हमारी खातिर किया है। देखें, ताकि हर वो चीज वापस लाए जो आदम ने बागे अदन में खो दी थी, उसने हमारे लिए उन चीजों को वापस छुड़ा लिया है। अब बरा अपने हाथों में इस किताब के साथ मौजूद है और हम उसके फजल और रहम को अपने ऊपर मांगने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारे लिए ये 7 मोहरों वाली किताब खोले और हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए माजी के पर्दे वक्त में झांकने दे। ओ मेरे खुदाया, गौर करें, जब उसने दस्तावेज की किताब यानी उस सरबा मोहर किताब को लिया, अब जरा इस बात को अपने ज़हन नशीन कर ले और वेद की मोहरों को तोड़ा ताकि उन्हें जाहिर करे, देखे और उन्हें अपनों तक लाए और अपनी तमाम छुड़ाई हुई मखलूक पर जाहिर कर दे। अब देखें, जब हम इसको मोहरों में देखेंगे तो हम वापस जाएंगे और वहाँ उन रूहों को देखेंगे जो मजबा के नीचे चला रही हैं। ऐ खुदावंद, कब तक, कब तक? और यहाँ मजबा पर वो एक दरमियानी की हैसियत से मौजूद है और कहा कि बस थोड़ी देर और, जब तक और बहुत सारे तुम्हारी तरह मुसीबत नहीं उठा लेते। लेकिन अब वो यहाँ से इस आखिरी मोहर की तरफ आता है, फिर वो मजीद दरमियानी नहीं रहता, फिर वो बादशाह बन जाता है। और वो क्या करता है? अगर वो एक बादशाह है तो फिर उसकी राया भी होनी चाहिए और उसकी राया उसके लोग हैं जिनको उसने छुड़ाया है, और वो उसके सामने उस वक़्त तक नहीं आ सकते जब तक वो छुड़ाने के हकूक हासिल नहीं कर लेता। और अब वो एक दरमियानी के मकाम से बाहर निकलकर सामने आता है जहां मौत ने हमें कब्र में डाल दिया था, मगर अब वो हकूक के साथ सामने आता है। आमीन। और हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा का नरसिंगा फूंका जाएगा और ये आखिरी नरसिंगा होगा। और जब 7वां फरिश्ता अपना पैगाम देता है तब आखिरी मोहर तोड़ दी जाती है और फिर आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे, और फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। वो दावा करता है, इसलिए वो सामने आता है ताकि अब وہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے. توجہ دیں, اس پر غور کریں. میرے خدایا مہروں کو توڑ کر بیدوں کو عیاں کرتا ہے, انہیں عیاں کرتا ہے. کن پر؟ آخری کلیسیائی زمانے کے ان لوگوں پر جو زندہ ہیں, کیونکہ باقی سب تو سوئے ہوئے ہیں. اس نے کہا اگرچہ وہ پہلی گھڑی میں, دوسری گھڑی میں, تیسری گھڑی میں یا پھر آگے بڑھتے ہوئے ساتویں گھڑی میں آ جاتا ہے. دیکھیں ساتویں گھڑی میں جہاں پر ایک فرمان یا ایک پکار ہوتی ہے, دیکھو دلہا آ پہنچا ہے. اور جب یہ پکار ان سوئی ہوئی کنواریوں میں ہوئی, یعنی نارمل کلیسیاؤں میں ایسا ہوا, تو کہا او آپ جانتے ہیں مجھے یقین ہے میں بھی اس رول قدس کو لینا چاہوں گا. کیا آپ نے پریسبٹیرین اور ایپسکوپولین نے غور کیا؟ کیا آپ نے فینکس میں میرا پیغام سنا کہ وہ آدمی جو وہاں کھڑے ہوئے تھے اور وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے, اچھا اس مصنف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو کہہ رہا ہے فلاں فلاں ہولی فادر, جبکہ بائبل کہتی ہے کہ اس طرح کسی بھی آدمی کو باپ نہ کہو. دیکھیں یہی سبب ہے کہ وہ ان کے ساتھ سو رہے ہیں, لیکن جب وہ سامنے آئے تو کہا جی ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں. ایک عورت نے کسی دوسری عورت کو فون کیا اور کہا تم جانتی ہو میں ایپسکوپولین ہوں, اور کہا کسی روز میں نے غیر زبان میں باتیں کی اور میرا ایمان ہے کہ میں نے روح القدس حاصل کر لیا ہے, لیکن کسی کو مت بتانا. مجھے بہت زیادہ شک ہے شاید آپ نے غیر زبانیں بولی ہوں, لیکن سنیں آپ ایک آدمی کو آگ پر بٹھا دیں تو کیا وہ شور نہیں مچائے گا؟ یہ سچ ہے, سمجھے وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا. کیا پترس اور یوحنا اور ان سب کا جو اوپر بالا خانہ میں تھے تصور کر سکتے ہیں؟ شاید وہ کہہ رہے ہوں او اب ہم نے رتبہ حاصل کر لیا ہے, اب ہمیں چپ رہنا چاہیے. مگر بھائیو وہ تو کھڑکیوں اور دروازوں کے وسیلے وہ سب باہر گلیوں میں نکل گئے اور پھر متوالے لوگوں کی مانند نظر آئے. یہی اصل رتبہ ہے. لیکن آپ غور کریں کہ کسی بھی حال میں سوئی ہوئی کنواریوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. جی ہاں یہ سچ ہے. اور یاد رکھیں اور جب وہ تیل خریدنے کی کوشش میں گئیں تو یاد کریں کلام نہیں کہتا کہ انہوں نے اسے حاصل کیا, لیکن جس دوران وہ اسے خریدنے کی کوشش کر رہی تھی ایک نرسنگا پھونکا گیا. پھر کیا ہوا؟ تمام کنواریاں جو سوئی ہوئی تھی وہ اٹھی اور اپنی مچھلوں کو درست کیا اور ضیافت میں اندر چلی گئیں. کیا یہ سچ ہے؟ اور باقی مصیبت کے دور کے لیے چھوڑ دی گئیں. ٹھیک ہے جہاں رونا ماتم اور دانتوں کا پیسنا ہے, یہ کلیسیا ہے نہ کہ دلہن. یہ کلیسیا ہے. دلہن اندر چلی گئی. دلہن اور کلیسیا کے درمیان بہت سارا فرق ہے. جی ہاں جناب, جی ہاں وہ شادی کی ضیافت میں اندر چلی گئی. او لڑکو توجہ دو, مورے آخری کلیسیا زمانے میں کیوں توڑی گئی؟ تاکہ ان سچائیوں کو عیاں کیا جائے. کیوں؟ اس لیے برے نے موروں کو توڑا اور انہیں اپنی کلیسیا پر عیاں کیا تاکہ اس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو اپنی بادشاہت کے لیے جمع کرے. دیکھیں اپنی دلہن کو. او میرے خدایا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اب اپنے پاس لائے. یہ کیا ہے؟ زمین کی مٹی سے, سمندر کی تہ سے, گڑوں سے, ہر جگہ اور ہر مقام سے, اور تاریکی کی نگری سے اور فردوس سے, یا پھر جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے وہ باہر پکارے گا اور وہ جواب دیں گے. آمین آمین. وہ پکارے گا اور وہ جواب دیں گے. دیکھیں وہ اپنے لوگوں کو لینے آتا ہے. اس نے اپنے بیدوں کو آشکارا کر دیا ہے اور انہوں نے اسے دیکھا ہے, کیونکہ اس وقت مزید وقت نہ رہے گا. اب دیر اور نہ ہوگی, یہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ذبح کیے ہوئے برے اور ایک شفاعتی کی حیثیت سے اس نے تخت کو چھوڑ دیا ہے, اور ایک ببر ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہ دنیا کی عدالت کے لیے آ رہا ہے جنہوں نے اس کے پیغام کو رد کیا ہے. کیونکہ اب وہ مزید ایک درمیانی نہیں رہا. اب پرانے عہد نامے کی تعلیم کو یاد رکھیں جبکہ ہم جلدی کرتے ہیں. دیکھیں جب رحم گاہ سے خون ہٹ جاتا تھا تو پھر وہ کیا بن جاتی تھی؟ وہ عدالت کی جگہ بن جاتی تھی. اور جب ذبح کیا ہوا برہ باپ کے تخت سے ابدیت سے آگے بڑھا اور اس نے اپنے حقوق کو لے لیا تو پھر وہ عدالت کی جگہ بن گئی, اور پھر وہ ایک برہ نہیں بلکہ ایک ببر بادشاہ بن گیا, اور اس نے اپنی ملکہ کو سامنے آنے کے لیے بلایا تاکہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو. کیا آپ نہیں جانتے کہ مقدس لوگ زمین کی عدالت کریں گے؟ دانیل نے کہا عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھولی تھی, ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے بادشاہ اور ملکہ کی موجودگی میں. اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی جو کہ کتاب حیات تھی جو کلیسیا کے لیے ہے, और बादशाह और मलका वहाँ खड़े हुए थे। जैसे एक चरवाहे ने ख्याल में कहा है, गुज़िश्ता रात जब मैं मैदान में लेटा था, मैंने आसमान पर सितारों को देखा। मैं हैरान हुआ कि कभी एक चरवाहा भी मीठी अलविदा और अलविदा करते आगे बढ़ सकेगा। वहाँ एक रास्ता है जो रोशन है और खुश इलाका है, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ एक मध्यम रास्ता है, लेकिन वो एक कुशादा रास्ता है जो हलाकत को पहुँचाता है और सारे रास्ते में जलता ही रहता है। देखें, वो एक दूसरे अजीम मालिक की बात करते हैं। वो अपने गल्ला को चराने वाली जुबान के लहजे में बात कर रहा है। लेकिन अगर आप कभी मवेशियों को चराने वाले अमल में हों, तो फिर आप उस मंसूबे को देख सकते हैं। वो एक दूसरे से अजीम मालक की बात करते हैं और वो कभी जरूरत से ज्यादा जखीरा नहीं करते। इसलिए वो कहते हैं, वो एक गुनाहगार के लिए हमेशा जगह बनाता है जो तंग रास्ते से होते हुए सीधा वहाँ जाएगा। वो कहते हैं, वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा और वो हर एक अमल को जानता और देखता है। इसलिए हिफाजत के लिए हम बेहतर निशान हासिल कर लें, इसलिए हमारा नाम अपनी अजीम मिलाप की किताब में रखता है। इसलिए वो कहते हैं, वहाँ मवेशियों की तरह एक बड़ा हजूम होगा जब चरवाहे वहाँ खोज लगाने वालों की मानिंद खड़े होंगे और अदालत के सवारों के जरिए निशान लगाया जाएगा। और वो नबी और गैबीन है क्योंकि वो तैनात किए गए हैं और हर निशान को जानते हैं। अगर आप कभी उस अमले में रहे हों और मालिक को वहाँ खड़े देखें, तो आप घोड़सवार और लोगों को काम करते देखेंगे और वो वहाँ से गुजरने वालों पर अपनी मोहर देखेगा, तो वो मालिक को इशारा करेगा और मालिक उन्हें देखेगा और सर हिलाकर इशारा करेगा और उसकी छोटी घोड़ी ठीक इधर उधर और चारों तरफ दौड़ती है, बाकर अंदर आ जाती है। मवेशियों के सींग दिखाई देते हैं और अपनी गायों पर वो खुद ही मोर लगाता है, समझे। इसलिए वो कहते हैं, वहाँ मवेशियों की तरह एक बड़ा हजूम होगा जब चरवाहे वहाँ खोज लगाने वालों की मानिंद खड़े होंगे और अदालत के सवारों के जरिए निशान लगाया जाएगा, क्योंकि ये तैनात किए गए हैं और हर निशान को जानते हैं, समझे। बस उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं एक भटकी भेड़ की मानिंद हूँगा, यानी एक ऐसे शख्स की मानिंद जो मरने वाला हो, जो बगैर मोहर के हो। वो इस तरह की भेड़ों का सूप बनाते थे, समझे। जब उन सवारों का मालिक उस तरफ आता होगा, तो वो इस तरह की भेड़ों को काटेगा। देखें, ये कौन है, ये सवारों का मालिक कौन है? ये बरा है और सात पैगंबर हैं जो उसने तैनात किए हैं और वो हर निशान को जानते हैं, समझे। तो जो करें, यहाँ वो आता है और एक शफायती, एक जबा किए हुए बरे की हैसियत से तख्त को छोड़ देता है और एक बब्बर यानी बादशाह बनता है, ताकि तमाम दुनिया को अदालत में लाए जिन्होंने उसे रद्द किया था। हमारा छुड़ाने वाला कराबती उस वक्त सबका बादशाह होगा। क्यों? इसलिए कि उसने मखलसी की दस्तावेज की किताब को ले लिया है। ये पूरी की पूरी उसके हाथ में है और मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, समझे। इसके बाद वो अपनी मेराज का दावा करता है, जो कि कलीसिया यानी दुल्हन है, वो उसका दावा करता है। इसके बाद फिर वो क्या करता है? फिर वो अपने मदे मुकाबल शैतान से निपटता है और वो उसे और उन सब को जो शैतान की तहरीक के जेरे साया थे और जिन्होंने उसके मखलसी के कलाम को रद्द कर दिया था, आग की झील में फेंक देता है। वो अब भी बादशाह है जबकि रहम अभी तख्त पर मौजूद है। चुनाचे आप उसकी बख्शिश को रद्द मत करें, समझे। सिर्फ सवार जानते हैं कि आप कौन हैं। और अब वो अपने दुश्मन को, जिसने 2000 साल से उसे परेशान किया था, ये दावा करते हुए थे, मैं जो कुछ भी करना चाहूँ इन लोगों के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि ये अब भी मेरे हाथ में है, ये मेरे हैं, क्योंकि ये लोग पीछे दस्तावेज की किताब को खो बैठे थे। लेकिन वो कराबती छुड़ाने वाला है, उसने कहा, वो अब भी यहाँ पीछे शफायत कर रहा है। लेकिन किस दिन? शैतान कहता है, मैं इन्हें कब्र में फेंक दूंगा। लेकिन उसने कलीसिया को बताया, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, समझे। लेकिन पहले मुझे एक शफायती होना जरूरी है। अब वो बाप के तख्त को छोड़कर पीछे अब्दियत से कदम बढ़ाते हुए सामने आता है, जहाँ वो एक शफायती की हैसियत से बैठा हुआ था, और अब वो एक बादशाह होने की हैसियत से आता है, ओ ताकि सब कौमों पर लोहे के आशा से हुक्मरानी करे, क्योंकि अदालत का होना मुकर्रर है। ओ भाई, हमारा छुड़ाने वाला कराबती ये सब थामे हुए है, ये सच है। जी हाँ जनाब। फिर वो क्या करता है? फिर वो उन्हें उस मध्य मुकाबल शैतान के हाथ से बुलाता है और कहता है, अब ये मेरे हैं, देख मैंने इन्हें कब्र से निकाल लिया है। और फिर वो उन सब झूठों को और कलाम की नकल करने वालों को और ऐसे ही तमाम लोगों को और साथ ही शैतान को लेता है और उन्हें आग की झील में भस्म कर देता है अब देखें, यहाँ वो खत्म हो जाते हैं, उन्हें आग के झील में फेंक दिया जाता है। ओ मेरे खुदाया, आप जानते हैं ये क्या है? मैं खत्म करने से पहले यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ और फिर हम जल्दी करेंगे। तवज्जो दे, अब हम सातवीं आयत से नीचे चलते हैं, लेकिन आठवीं आयत से 14 तक मैं चाहता हूँ कि आप तवज्जो करें कि क्या वकू पजीर होता है। और वो सब जो आसमान पर और वो सब जो जमीन पर, जरा इसको सुने। अब मुझे जरा इसे पढ़ने दे, गालबन सातवीं आयत से। देखें, मुझे यकीन है अगर मैं इसे किताबे मुकद्दस से पढ़ता हूँ तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन पहले छठी आयत को देखते हैं। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा, उसके सात सर, बल्कि मेरा मतलब है सात सींग और सात आंखें थी। हम इसे बयान कर चुके हैं, ये खुदा की सात रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। देखें, सात कलीसियाई जमानों के सात पैगंबर जिन्होंने उस जलती आग को कायम रखा, समझे? ठीक है। और उसने आकर बर्रे ने तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया जो तख्त पर बैठा हुआ था। अब तवज्जो दें, और जब उसने ऐसा किया तो देखें फिर क्या हुआ। आप एक युबली के बारे में बात करते हैं, अब देखें ये उन मोरों को तोड़ा जाना है, और ये बात हम आधे घंटे की छाई हुई खामोशी में देखेंगे। ये फौरन इसके बाद वकू होती हैं। अब देखें, हम इसमें शुरू करेंगे और ठीक यहाँ आने वाले इतवार की रात इसको खत्म करेंगे। अब बड़े ध्यान से सुने, क्या आप तैयार हैं? तो कहें आमीन। तवज्जो के साथ सुने, जब उसने ऐसा किया तो फिर क्या हुआ? जब सारी मखलूकात करा रही थी और कोई नहीं जानता था कि क्या करे, और यूहन्ना भी रो रहा था, तब चलता हुआ बर्रा सामने आ गया, और ये किताब अपने असली मालक के हाथों में थी, क्योंकि इंसान गिर चुका था और इस किताब को खो चुका था, और अब कोई भी शख्स इस काबिल ना था जो जमीन को छुड़ा था। जैसे कि मैंने कहा, ना कोई प्रीस्ट, ना पोप, और ना ही कोई और शख्स। लेकिन फिर बर्रा सामने आता है, ना के मरियम, ना के कोई मुकद्दस, ना कोई और, ना कोई मुकद्दस, लेकिन लहू लहान ज़बह किया हुआ बड़ा सामने आता है जो तख्त पर बैठा हुआ था, उसके दाहिने हाथ से इस किताब को लेता है। और तब उन्होंने वहाँ एक बड़ा देखा, और तब कुर्बान गाह के नीचे की तमाम रूहों, और तब उन फरिश्तों, और तब उन बुजुर्गों, और तब हर एक चीज ने उसे देखा। तब ये बात खत्म होती है, लेकिन अभी तक ये काम मुस्तकबिल में होना मुकर्रर है। आज रात वो एक दरमियानी की हैसियत से मौजूद है, लेकिन वो इस काम को सरंजाम देने आ रहा है। तवज्जो करें, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बरे के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊंट से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, ये वो हैं जो कुर्बान गाह के नीचे हैं, जिन्होंने लंबे अरसे से दुआएं की हैं। गौर करें, उन्होंने मखलसी के लिए दुआ की थी और जी उठने के लिए दुआ की थी, और यहाँ ये बुजुर्ग उनकी दुआओं को सामने अंडेल रहे हैं, इसलिए कि अब हमने एक नुमाइंदगी करने वाले को हासिल कर लिया है। हमने आसमान में एक कराबती को हासिल कर लिया है जो अपना दावा करने के लिए सामने आता है। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू इस किताब को लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से, तवज्जो दे, हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाह और काहिन बना दिया है, और वो जमीन पर बादशाही करेंगे। वो वापस आना चाहते हैं, और यहाँ वो बादशाह और काहिन होने के लिए वापस आएंगे। खुदा को जलाल मिले, मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि बेगाना जुबान में बोलूँ। देखें, तवज्जो दें, जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे पास ऐसी जुबान नहीं है जिससे मैं उसकी ज्यादा हमद कर सकूँ। मुझे ऐसी ही जुबान की जरूरत है जिससे मैं जानता तक ना हूँ। ध्यान दें, और जब मैंने निगाह की, इस बात को सुने, और जब मैंने निगाह की तो बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी। सुने कैसे युबली हो रही है, जब उन्होंने देखा कि वो बड़ा आया है और उस मखलसी की किताब को ले लिया है, तो वो रूहें भी चिल्ला उठी, हम इसे लेंगे। सब कुछ, बल्कि हर एक चीज, हत्ता के बुजुर्गों ने भी गिरकर सजदा किया। उन्होंने मुकद्दसों की दुआओं को अंडेल दिया। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ हमारे लिए कराबती पेश हुआ था। वो गिर गए, उन्होंने सजदा किया, और उन्होंने एक नया गीत गाया और कहा, तू ही इस लायक है, इसलिए कि तू ही ज़बह हुआ। इस बात पर तवज्जो करें और उन फरिश्तों पर निगाह करें। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में था। तवज्जो दें। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बह किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। देखें, जब वो बड़ा रहनुमाई करता और अपने शफायती होने के मकाम को छोड़ता है और अपनी मलकियत के लिए सामने आता है ताकि अपना दावा करे, तो आसमान में कैसी युबली होगी। अब जानते हैं, आगे चलकर यूहन्ना को एक बात मिलती है, उसने जरूर वहाँ अपना नाम लिखा देखा होगा। जब मोहरें तोड़ी गई तो वो जरूर ही नहायत खुश हुआ होगा। सुने उसने क्या कहा, फिर मैंने आसमान और जमीन और जमीन के नीचे की और समुन्दर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हम्द और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन आमीन ओ सुम आमीन ओ। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने उसे गिरकर सिजदा किया, जो जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। जब वो बड़ा चलता हुआ आया तो यूहन्ना युबली के मुतालिक बात करता है, उस वक्त के मुतालिक बात करता है। देखें, वो किताब आसमान में सरबा मोहर है और वो बेद है। आप कहते हैं, क्या मेरा नाम वहाँ मौजूद है? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वहाँ मौजूद है। लेकिन अगर ये मौजूद है तो फिर ये बनाए आलम से पेशतर किताब में लिखा गया था। पहली बात, ये उसी मखलसी की नुमाइंदगी करते हुए बड़ा आया जो बनाए आलम से पेशतर ज़बह किया गया था, और उसने किताब को लिया, तारीफ हो, और किताब को खोला और मोहरों को तोड़ा और इसे जमीन पर अपने सातवें फरिश्ते के पास भेजा ताकि इसे अपने लोगों पर आश्कारा करे। आप यहाँ हैं, ओ मेरे खुदाया। फिर क्या होता है? फिर चीखो पुकार, नारे, हालेलुया, मसा, कुदरत और जलाल जाहिर होता है। और हमारा भाई बुजुर्ग यूहन्ना वहाँ खड़ा हुआ ऊंची आवाज में चला रहा था। क्यों? उसने कहा, फिर मैंने आसमान की और जमीन की और समुंदर की सब मखलूकात को ये कहते सुना, आमीन आमीन, कि उसकी हम्द और तमजीद और कुदरत और सल्तनत उसकी हो जो अब्दुल्लाबाद जिंदा है। देखें, जब वो मोरें टूटी तो फिर एक खुशगवार वक्त था। यूहन्ना ने जरूर पर्दा वक्त में जाकर देखा होगा और कहा होगा, यूहन्ना वहाँ मौजूद है। हो हो, वो बहुत खुश था, हत्ता कि उसने कहा, आसमान की सारी मखलूकात, वो जरूर हकीकतन चिल्ला उठा। क्या वो नहीं चिल्ला उठा था? फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को ये कहते सुना कि आमीन, बड़ा ही हम्द और तमजीद और हिकमत और कुदरत और सल्तनत और दौलत के लायक है, आमीन। क्यों? क्योंकि तब उसको ये मुकाशवा मिल गया था के बर्रा छुड़ाने वाला हमारा कराबती शफायती का काम छोड़कर आ गया है और यहाँ वो अपनी मलकियत को लेने आया है। हो, जल्द ही बर्रा अपनी दुल्हन को ले जाएगा ताकि हमेशा उसके साथ रहे। तमाम आसमानी लश्कर जमा होंगे। हो, ये जलाली नजारा होगा और तमाम मुकद्दसीन बेदाग और सफेद होंगे और हम यीशु के साथ अब्दी बादशाही करेंगे। हो, आओ और खाओ, मालिक बुलाता है कलाम को, आओ और खाओ। हो, मैंने बगैर अल्फाज के हासिल किया है, समझे? आओ और खाओ, आओ और खाओ। आप यीशु की मेज पर किसी भी वक्त खाना खा सकते हैं अभी, लेकिन जब उस मकाम को छोड़ देगा फिर कोई उम्मीद ना रहेगी, क्योंकि ये वो हस्ती है जिसने भीड़ को शेर किया और पानी को मैं में तब्दील किया। उसने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। ओ मेरे खुदाया, उसने आखिरी दिनों में इन कामों का वादा किया है। उसने इन कामों के मुतल्लिक कहा है, उसने बताया कि अब इन बातों के मुकाशवा को जानने का वक्त है। आओ और खाओ। हो मेरे भाई, इसे मत खोएं। अब आए, हम एक मिनट के लिए अपने सरों को झुकाएं। कल रात खुदा के फजल से हम पहली मोर को खोलने की कोशिश करेंगे, अगरचे खुदा इसे हमारे लिए खोलेगा तो, और हम देखेंगे कि इसमें क्या मुकाशफा है जो बनाए आलम से पोशीदा रहा है। इससे पहले कि हम दुआ करें, गुनाहगार दोस्तों या नीम गर्म कलीसियाई रुकनों, चाहे आपने सिर्फ एक कलीसिया में रुकनियत हासिल की है या आपने रुकनियत हासिल नहीं की है, अगर आपने सिर्फ एक रुकनियत हासिल कर रखी है तो आपके लिए बेहतर होगा जितनी जल्दी मुमकिन हो इससे किनारा कशी कर लें, क्योंकि आपको एक पदेश की जरूरत है। आपको खून के पास आना चाहिए, आपको किसी ऐसी चीज के पास आना चाहिए जिससे गुनाह के धब्बे मिट जाते हैं, यहाँ तक गुनाह का मजीद नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। अगर आपने तैयारी नहीं की तो अभी करें, ताकि बरे का हवा में इस्तकबाल करें और उस ताकत से जिसमें हम आरास्ता हैं, अपने इख्तियार से जो कादर मुतली की तरफ से दिया गया है और आग के सतून और एक फरिश्ते के जरिए खिदमत पाने के वसीला से, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको इस बात का हुक्म देता हूँ, बस इस जमीन की कलीसिया की क्यामगाह की रुकनियत के साथ उससे मिलने की कोशिश मत करें। आए जबकि अभी वो एक दरमियानी की हैसियत से मौजूद है, और जैसा कि मुझे मालूम है कि वो अभी तक तख्त पर मौजूद है और शफायत कर रहा है। चुनाचे एक दिन ऐसा आएगा जब आप आना चाहेंगे, मगर फिर वो मजीद दरमियानी नहीं होगा। अगर हम इस जमाने पर गौर करें जिसमें हम रह रहे हैं, तो हम सातवें कलीसिया जमाने में हैं और खुदा के बेद सामने आ गए हैं कि उनके अंदर क्या है, और खुदा की साबित करने वाली रूह हर एक चीज को जाहिर कर रही है जिसका उसने आखिरी दिनों में वादा किया है। अब बताएं बाकी कितना वक्त बचा है, इसलिए ऐ गुनाहगार दोस्तों लौट आओ। खुदावंद यीशु, वक्त खत्म हो रहा है और जैसा कि हम सोच रहे हैं शायद ये उसके बाद हो, मगर हम उस घड़ी को करीब होते हुए देखकर खुश हैं, क्योंकि ये ईमानदार के लिए बहुत ही जलाली घड़ी है जो दुनिया ने कभी नहीं देखी, लेकिन रद्द करने वालों के लिए ये नहायत ही परेशानी का वक्त है जो कभी हो सकता है। और हरूफ तहजी में कोई ऐसे अल्फाज तलाश नहीं कर सकते, कोई ऐसे हरूफ जो अल्फाज बयान कर सके, जो इस दुख और मुसीबत को जाहिर कर सके जो ऐसे लोगों के लिए रखी हुई है, और ना ही हमारे हरूफ तहजी में ऐसे लफ्ज हैं जो बनाए जा सकते हैं कि उन बरकात को जाहिर कर सके जो ईमानदारों के लिए रखी हुई है। ए बाप, हो सकता है कि आज रात यहाँ पर कुछ बेउम्मीद लोग हों और वो समझदार इंसान बने हों, और अगर अब भी खून रहमगाह पर मौजूद है तो होने दे कि बड़ा तख्त से चलता हुआ आज रात इनके दिलों में आ जाए और इन पर जाहिर करे कि ये खोए हुए हैं, और उन लहूलुहान हाथों के साथ कहे आ जाओ जबकि अभी आने का वक्त मौजूद है। ऐ खुदावंद, मैं पैगाम को अपनी दुआ के साथ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ बाप, यीशु के नाम में तेरी मर्जी पूरी हो। जबकि हमारे सर झुके हुए हैं, अगर आपने अभी तक इस दरखास्त और इस मांग को पूरा नहीं किया है और आपने सिर्फ अपने चर्च पर भरोसा किया है, तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं जो छुड़ा सकती है। और अगर आपने कुछ मुकदसों से शिफायत करने पर भरोसा किया है तो आप अभी तक खोए हुए हैं, और अगर आप अपने हाथों के किए हुए कामों पर भरोसा किए हुए हैं, ऐसे काम जो आपने किए हैं और वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन तो भी आप खोए हुए हैं, अगर आप अपनी माँ की दुआओं के साथ भरोसा किए हुए हैं या फिर अपनी माँ बाप की रास्तबाजी पर भरोसा किए हुए हैं, अगर आप ऐसी ही बातों पर भरोसा किए हुए हैं तो आप खोए हुए हैं। अगर आप किसी जोश और किसी अजनबी एहसास और किसी जज्बे और गैर जुबानों में बातें करने और नाचने पर भरोसा किए हुए हैं, अगरचे यही सब कुछ है जिस पर आप भरोसा रखते हैं और बरे को नहीं जानते, यानी जाती तौर पर उसे नहीं जानते, तो फिर मैं आपको खुदा की हजूरी में हुक्म देता हूँ कि इसी घड़ी खुदा के साथ इस बात को दुरुस्त कर लें। अपने दिल की गहराई में दुआ करें और बिल्कुल सादा बन जाए, क्योंकि खुदा सादगी में छुपा हुआ है। आपको याद है बाइबल कहती है कि जितने ईमान लाए उनमें शामिल हो गए। और अब जबकि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप अपना एक अब्दी फैसला कर लें कि खुदावंद मैं यही कहूंगा, हाँ मैं मौजूद हूँ, और फैसला एक पत्थर की मानिंद है, लेकिन एक संग तराश के बगैर जो इसको तराश सकता है, इस पत्थर में क्या अच्छापन है जो अमारत में लगता है और अमारत को शक्लो सूरत देता है। तो फिर इस वक्त आप जो कुछ भी हैं, अपने आप को पाकरू को तराशने दें, ताकि वो आपको वो कुछ बनाए जो आपको होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक बाज़ाब्ता चर्च मेंबर हैं, अगर आप एक गुनाहगार हैं, या आप जो कुछ भी हैं, अगर आप मसीह के और पाकरू के बगैर हैं, तो खुदा आज रात आपको सलामती बख्शे। अब ऐ खुदावंद, जैसे कि मैं समझ रखते हुए मैं जानता हूँ कि कैसे आना है, और जैसे कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक मैं जानता हूँ कि कैसे आना चाहिए, अब मैं इन लोगों के साथ आया हूँ और मैंने इन्हें कलाम के साथ तेरे सुपुर्द किया है, और खुदावंद मैं इस बात पर भरोसा कर रहा हूँ कि आज रात कलाम मुकद्दस इन लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है, और अगर यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं, या उनकी जिंदगियों में पाक रूह की मिठास भरी हजूरी नहीं है, बल्कि गुस्सा है और दूसरी चीजें हैं, या खुदगर्जी है, या कुछ और है जिसने इस अजीम चीज से उन्हें काट दिया है और इसे महरूम रखा हुआ है, या कोई अकीदा है, या कोई ऐसा जोश है जिसने इन्हें खुदा की रफाकत की मिठास से महरूम रखा है, तो अब ये बंधन खुल जाए, और अब वो लहू लुहान बरा मुकद्दस कराबती जो तख्त से उठकर आता है, खुदा के तख्त के रास्ते की रूहानी रोशनियों में से निकलकर वो अपनी मेराज का दावा करने आता है, ऐ खुदा आज रात ये बख्श दे कि ये लोग उसे पालें, होने दे कि हर एक फैसला दिल से किया जाए, और बख्श दे कि ये लोग खुद को उसके हवाले कर दें, क्योंकि वही वाहिद है जो इन्हें तराश सकता है और इन्हें खुदा के बेटे और बेटियों की शक्ल में तब्दील कर सकता है। अब दुआ में संजीदा रहें, क्योंकि मैंने जिस तरह से इसे करने की रहनुमाई महसूस की है, उसी तरह से मैं कर रहा हूँ। खुदा की हजूरी में संजीदा रहें, जैसा कि उसने खुद को आप पर साबित कर दिया है, और आप एक मसीही नहीं थे, या आप वो नहीं हैं जिसे हम कहते हैं, ना कि एक तंजीमी रुकन, बल्कि मेरा मतलब है एक नए सिरे से पैदा शुदा मसीह है। लेकिन आप दिल से ईमान रखें कि पैगाम सच्चा है, और आप दिल से ईमान रखें कि आप सिर्फ खुदा के फजल की बदौलत ही निजात पा सकते हैं, और आप यकीन करें कि अब वो आपके दिल से कलाम कर रहा है, और आपको उसे कबूल करना चाहिए, और उसके कलाम के लिए तैयार रहें, ताकि आप इस वक्त जो कुछ भी हैं, आपको तराश दे और आपको वो कुछ बना दे जो आपको होना चाहिए। क्या आप अपने कदमों पर खड़े होकर बिल्कुल इस बात के गवाह होना चाहेंगे? अगर कोई ऐसा शख्स यहाँ मौजूद है और वो चाहता है कि ये सब कुछ करे, तो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए।
Heavenly Father, I know not no more what to do but to quote your word.
आसमानी बाप, मैं जानता हूँ कि मजीद और कुछ नहीं है जो किया जाए, बल्कि सिर्फ तेरे कलाम को पेश करना है। यहाँ वो लोग अपने कदमों पर खड़े हो गए हैं जो महसूस करते हैं कि वो वहाँ नहीं हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए, जो रैप्चर के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये वाकया हमारे लिए पहली मोर खुलने से पहले भी हो सकता है। और ऐ बाप, मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, और मैं तेरा खादम होते हुए इस दुआ को अजीम शफायत करने वाले मसीह के हजूर पेश करता हूँ, और जैसे ये लोग दुआ कर रहे हैं, मैं भी अपनी दुआ को इनके साथ खुदा के अजीम तख्त पर पेश करता हूँ, जहाँ आज रात भी वो लहू लुहान कुर्बानी मौजूद है, और किसी भी वक्त वो उस तख्त से कदम बढ़ा सकता है, ताकि सामने आकर अपनी मिरास का दावा करे, और उसके बाद वहाँ मजीद रहम मौजूद ना होगा, बल्कि फिर वो अदालत होगी। ऐ खुदावंद, ये लोग जो कदमों पर खड़े हैं और जो खड़े हो रहे हैं, इन्हें बख्श दे जो अपने दिलों में अपना फैसला कर रहे हैं और ख्वाहिश कर रहे हैं کہ خدا کا روح انہیں نرم و ملائم کر دے اور انہیں تراش دے، اور خداوند خدا کے گھر میں انہیں زندہ پتھروں کی شکل صورت دے دے۔ اے باپ، یہ بخش دے۔ اب میں ان لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور تو نے کہا ہے کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ اور مقدس فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ اور آج رات اب بھی تو وہاں ان سب کے روبرو موجود ہے۔ اور اے خداوند، اگر یہ بات لوگوں کے دل کی گہرائی سے نکلی ہے اور یہ بالکل پر یقین ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے، تو تو اب بھی ان لوگوں کے لیے شفاعت کر رہا ہے اور انہیں اس قربانی کے برے کے صاف کرنے والے خون کے رحم کی اور فضل کی بدولت قبول کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں، اب یہ لوگ تیرے ہیں اور تیرے رہیں گے، آمین۔ اب آپ جو ان لوگوں کو یہاں ان کے قدموں پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ جوان آدمی بھی یہاں موجود ہے، اور وہ سب جو اب بھی کھڑے ہو رہے ہیں، آپ نے محسوس کیا کہ ہر قسم کا گناہ اور مذمت ختم ہو گئی ہے۔ آپ میں سے جو ان کے قریب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اٹھ جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں اور کہیں، بھائی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، بہن میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ صرف ان سے ہاتھ ملائیں اور کہیں، خدا آپ کو برکت دے، اور باقی سب کچھ اب قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ صرف کہیں، میں دعا کروں گا اور میں وہ سب کچھ کروں گا جو میں خدا کی بادشاہت کے لیے آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ آج بلا رہا ہے، یسوع بلا رہا ہے، آج وہ نرمی سے بلا رہا ہے۔ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ ہو ہم اس کے بغیر کیا کریں گے؟ لکھا ہے، آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے انسان جیتا رہے گا۔ ہو اے خداوند، مجھے اپنے کلام سے سیر اور آسودہ کر، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا کہ بعض لوگوں کا دستور ہے، اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ کل رات خدا کی مرضی سے اور خدا کے فضل کی بدولت میں کوشش کروں گا کہ اپنے سارے دل کے ساتھ اس سے شفاعت کے لیے درخواست کروں کہ آگے بڑھ کر ان مہروں کے بید کو کھولے اور ان لوگوں کے سامنے خدا کے کلام کا اعلان کرے۔ جب تک میں اور آپ پھر ملاقات نہیں کرتے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ اور اب میں اس عبادت کو واپس اپنے موزیز بھائی اور پاسٹر بھائی نیول کے حوالے کرتا ہوں۔ کتنے لوگ بھائی نیول سے محبت کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی نیول سامنے آ جائیں۔ بھائی نیول، بھائی خدا آپ کو برکت دے۔ Remember the service tomorrow night, be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly